बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की
जय।
वृंदावन बिहारी लाल की
जय।
धर्म की
जय हो।
सभी प्रेम से बोले धर्म की
जय हो।
अधर्म का
नाश हो।
प्राणियों में
सद्भावना हो।
विश्व का
कल्याण हो।
गौ माता की
जय हो।
गंगा माता की
जय हो।
भागवत भगवान की
जय हो।
वेद व्यास भगवान की
जय हो।
भक्त भगवान की
जय।
संत भगवान की
जय हो।
ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की
जय हो।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे मुकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दगन्धम् हतपापवृन्दम् वारायणशीनाथ मनाथनाथम् श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत् मपेतकृत्यम् द्वैपायिनो विरहिकातनया जुवाव पुत्रेति तन्मे तया तर्भो मुने दुस्तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण नारायण
भज मन्नारायण नारायण नारायण भज
मन्नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण
बद्री नारायण नारायण नारायण। कन्हैया लाल की नित्य की भांति सर्वप्रथम शंकल मंत्र का उच्चारण करें। सभी लोग भाव और निष्ठा के साथ तन्मयता पूर्वक शंकल मंत्र का उच्चारण करेंगे, ऐसी कोई जेवा बाकी न रहे जो इस संकल्प मंत्र का उच्चारण ना करे। सभी लोग ओम तत्सद
तत्सद
द्वैतस्य
तस्य
ब्रह्मणो अन्हि द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वात्मनमंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते कीलकनाम संवत्सरे अमुक्नामनोहम। अपने नाम का उच्चारण कीजिए। अमुक गोत्र उत्पन्नोहम, अपने गोत्र का उच्चारण करिए और बोलिए अद्य मासानाम उत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे सप्तम्यां तिथौ बुधवासरे महाराष्ट्रप्रान्ते
मुंबईनगर्यां
श्रीप्रेमपुरी आश्रमे श्रीमद्भागवत सप्ताह
श्रवणार्थं
द्वितीय उपस्थितौ विनियोगः अनेन
श्रीमद्भागवत सप्ताह
श्रवणेन
माम
धर्मः
अर्थः
कामः
मोक्षः
फलानां
प्राप्तिः
अस्तु
एवं च
अभीष्ट
फल
सिद्धिः
भगवत्कृपा
अस्तु
श्रीकृष्ण
परमात्मा देवता
प्रियंता
इति जगन्नियंता जगदाधार अखंड ब्रह्मांड नायक नंदनंदन मुरली मनोहर एवं आवाहित समस्त देव विग्रहों की पावन पुनीत पादारविंद में सत्सत वंदन परम आदरणीय परम श्रद्धे लीलालीन ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में सत्सत वंदन तथा हमारे प्रेमपुरी आश्रम के समस्त ट्रस्टीवृंद कार्यकुशल कमेटी के समस्त भक्तवृंद तथा मुख्य यजमान के रूप में हमारे मधुरी बहन ढोलकिया परिवार तथा समस्त हमारे यजमान वृंद संगीतज्ञ वृंद आचार्य वृंद श्रद्धामयी मंगलमयी मातृशक्ति स्वरूपा माताओं एवं कृष्ण रस के रसिक पिपासु समस्त भक्तजन आइए अपने चित्त की वृत्ति को भगवान में समाहित करते हुए हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मन को तन्मय करें, अपनी वृत्ति को भगवान में समाहित करें, प्रयत्न करें, प्रयास करें कि हम दुष्कर्मों की ओर निम्नगामी कर्मों की ओर अग्रसारित न हो। हम सदकर्मों में श्रेष्ठ कर्मों में शुभाचरणों में संलग्न रहें। प्रतिपल प्रतिक्षण हमारी यही यत्न प्रयत्न प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जो मानव जन्म मिला है ये बार बार नहीं मिलता है। यहां वेद व्यास जी बतला रहे हैं, अपनी वाणी से कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज की वाणी से व्याख्यान करवा रहे हैं, परीक्षित को समझा रहे हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभो मानुषो देहो, देहिनाम क्षण भंगुरम और तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, नर नारी का शरीर मिला है, दुर्लभ हो, ये दुर्लभ है, सभी को नहीं मिल सकता है। स्वर्ग में बैठे देवता याचना करते हैं, आकांक्षा करते हैं, अनुनय विनय आग्रह करते हैं कि हे परमात्मा, आप मुझे मानव का शरीर देना, मृत्यु लोक में मुझे मानव शरीर देना। ध्यान से सुनना बात को। आप यज्ञ करके कहते हैं कि मुझे स्वर्ग के फल मिले, लेकिन स्वर्ग के देवता कहते हैं कि हमें मृत्यु लोक चाहिए। ऐसा क्यों? स्वर्ग के देवता समझते हैं कि ये केवल भोग योनि है, यहाँ केवल भोग भोगे जा सकते हैं, नया नूतन कोई कर्म नहीं बनाया जा सकता है। नए कर्म के लिए तो मानव शरीर ही आवश्यक है, इसलिए दुर्लभो मानुषो देहो। इसलिए सुखदेव जी बोले, परीक्षित दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। गोस्वामी जी की ओर थोड़ा दृष्टि डालें, रामायण की ओर, वो भी कहते हैं कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। इसी बात को गोस्वामी जी ने अपने मानस में कहा है, वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद भागवत में कहा है। थोड़ा योग वशिष्ठ को देखें तो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी राम को यही उपदेश दे रहे हैं। आयुषा क्षण ये कोपी, हे राम, आयुषा क्षण ये कोपी, आयुषा क्षण ये कोपी, सर्वरत्नैन लभ्यते, ए वृथा नीयते येन सा प्रमाधि नराधम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, कि जीवन में जो आयु मिली है, समय मिला है, मानव तल मिला है, व्यर्थ नहीं गमाना है। वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ में राम को उपदेश दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में कह रहे हैं, और श्रीमद भागवत में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बतला रहे हैं, दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुरम, तत्रापि दुर्लभम मन्ने। ये दुर्लभ क्यों है? बोले वैकुंठ प्रिय दर्शनम, इस मानव शरीर से वैकुंठ, गोलोक धाम, साकेत लोक, ब्रह्मलोक, सायुज्य मुक्ति, सामीप मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, इन सब की प्राप्ति होती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ऐसे मोक्ष के द्वार को पाकर के यदि हमने प्रमाद किया, आलस्य किया, ध्यान देना, छोटी सी भूल, छोटी सी त्रुटि, एक व्यक्ति कगार पर खड़ा हुआ है, पहाड़ के कगार पर खड़ा है, जरा सा धक्का लगे तो नीचे गिर करके चकना चूर हो सकता है। ये मानव शरीर इसी तरह से है, ऐसी जगह पे खड़ा है, ये धक्का लगा भोगों का, ये धक्का लगा विषयों का, ये धक्का लगा प्रपंच का, तो गिर करके फिर ठिकाना नहीं है, फिर संभलना मुश्किल है, फिर संभलना मुश्किल है। प्रयत्न करो, प्रयास करो, हमारे इस शरीर से उत्तम कर्म हो, हमसे कोई भूल न हो, हमसे कोई त्रुटि न हो, हम कहीं पर किसी भी प्रकार से चूक न कर दें, हमसे चूक न हो जाए। सजग रहो, सावधान रहो, चूकना नहीं, चूक गया वो चला गया, संभलने का स्थान, ये बनने का स्थान है, हम इसी शरीर में बन सकते हैं और इसमें बिगड़ सकते हैं। हमको ईश्वर ने ऐसा मानव शरीर दिया है, हम इससे ऊर्ध्वगामी उस उत्तम लोक की, मुक्ति लोक की, उस शालोक की, सामीप्य लोक की
हम उस कैवल्य पद की भी प्राप्ति भी कर सकते हैं और नाली का कीड़ा भी बन सकते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं? किसी को दोष नहीं कभी देना चाहिए, व्यक्ति का अपना ही दोष होता है। स्वकर्म सूत्र ही गतितो ही लोका, स्वकर्म सूत्र ही हम अपने ही कर्मों के द्वारा आगे का ग्रथन करते हैं, रचना करते हैं। किसी को दोष नहीं देना, ध्यान देना। श्रीमद् भागवत हमारे जीवन को आलोडित बिलोडित करके जिस प्रकार से मथाने के माध्यम से पड़े हुए दही को आप मथते हैं और मथ करके उसमें से एक सार तत्व मक्खन घृत निकाल के तैयार करते हैं, इसी प्रकार से इस संसार के अंदर ये मानव शरीर है, इसका मंथन कीजिए और मंथन करने के बाद जो परम तत्व ब्रह्म तत्व है, ध्यान देना, जो परम तत्व ब्रह्म तत्व है हमने वहां तक जाना है, उस तत्व को पाना है। हम कितने सजग हैं, हम कितने सावधान हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बार बार कहते हैं, राजन सावधान, राजन सावधान। भागवत कथा सावधानी की है, भागवत कथा सावधान होके नहीं सुनोगे तो हम गड़बड़ा जाएंगे। सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, राजा परीक्षित की एकटक दृष्टि अपने गुरुदेव महाराज के पावन पुरित पादारविंद में, उनके मुखारविंद में जुड़ी है। एक एक शब्द को ध्यान देना, एक एक शब्द को उनके मुखारविंद से जो भी ये अमृत का रस निश्चित होता है, जो अमृतत्व निकलता है, परीक्षित महाराज उस अमृत को, निकले हुए अमृत को गण रंध्रों के माध्यम से, कर्ण सुतकुली अवच्छिन्नम इत आकाशम इति श्रोत्रम, न्याय दर्शन, कर्ण सुतकुली अवच्छिन्नम इत अवकाशम इत आकाशम ततकर्णम, एक एक शब्द को निश्चित, एक एक शब्द को गुरुदेव के मुखार बिंद से निकला एक भी शब्द बिना सुना हुआ नहीं जाना चाहिए। एक एक शब्द को सुनकर के कर्ण सस्कुली के माध्यम से हृदय में स्थित करते हैं और प्रयास करते हैं कि मेरे जीवन में ये घुल मिल जाए, जैसा मेरे गुरुदेव ने बताया मैं वैसा बन जाऊं, मेरा जीवन वैसा बन जाए। प्रयत्न करो, प्रयास करो, ध्यान देना। परिचित सजग हैं, परिचित सावधान हैं, सावधान। आप उसी कथा को सुन रहे हैं, कथा में बैठो तो ऐसा भाव बनाओ हम परीक्षित हैं। हम क्या हैं? ध्यान देना, हम परीक्षित हैं। महाराज जी कथा कह रहे, सुखदेव हैं, आपको वही फल मिलेगा, आपको वही फल मिलेगा जो राजा परीक्षित ने शुक्रताल में बैठ करके कलकल नैनानी भगवती मातेश्वरी गंगा जाह्नवी के तट पर बैठ करके जो सप्ताह सुना था। मैं तुमको वचन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, तुमको वही फल मिलेगा, वही फल मिलेगा इस बम्बई नगरी में बैठ करके। एक बार आप डूब जाओ, विभोर हो जाओ, परीक्षित बनकर के कथा सुनो। जब परीक्षित जैसी लगन, जब परीक्षित जैसी उत्कंठा, जब परीक्षित जैसा भाव, तीव्रता, लगन आपके अंदर बढ़ेगी तो कोई भी शब्द सुना हुआ बिना श्रवण हुआ हुआ आपसे निकलेगा नहीं, बात करने की इच्छा नहीं होगी, इधर उधर झांकने की इच्छा नहीं होगी। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात बताया जा रहा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, दुर्लभो मानुषो देहो, देही राम क्षण भंगुरम, तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हे राजन परीक्षित, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ये मानव शरीर भोगों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी महाराज भी कह रहे हैं ये शरीर भोगों के लिए नहीं है। वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं अरे भोगो न भुक्ता, भोगो न भुक्ता वयमेव भोक्ता, और तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। भोगो न भुक्ता, आप भोगों को भोग के समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन भोग तुमको भोग करके खलास कर देंगे, समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। सावधान सतर्क, आप भोगों को भोग के खत्म नहीं कर सकते, लेकिन भोग तुमको खत्म कर देंगे। राजन सावधान, भोगों की ओर वृत्ति नहीं जानी चाहिए। सुखदेव जी महाराज को मालूम है कि मेरा शिष्य अभी जगत से आया है, अभी संसार से उठकर के आया है, तीव्र लगन लेकर के आया है। कभी कभी बौछार, कभी कभी हवा विषयों की आती है, भोगों की आती है, मन को झकझोर देती है। कुशल गुरुदेव का कार्य है, महान गुरुदेव का कार्य है, उस हवा के झोंके से अपने शिष्य को संभाले, अपने शिष्य को बचाए। सुखदेव जी महाराज ने सावधान किया, राजन परिचित सावधान। भूल नहीं कर देना, त्रुटि नहीं कर देना, इतकिंचित कछिंत कथंचित भी आपने भूल कर दी तो महती विनष्टि, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राजन सावधान, भोगों में वृत्ति जाने से व्यक्ति का पतन हो जाता है, व्यक्ति गर्त में गिर जाता है, उसका किया हुआ सदकर्म समाप्त हो जाता है, उसका पुण्य कर्म लुप्त हो जाता है, उसका दिया हुआ दान का फल समाप्त हो जाता है। ध्यान देना, इसलिए भोगों में प्रवृत्ति नहीं, सतर्क हो। राजन सावधान। परीक्षित जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुदेव हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, कृपा करके थोड़ा बतलाने की कृपा करो, ये किसी से भूल हुई है, किसी ने ये त्रुटि की है? सुखदेव जी महाराज बोले अनेकों ने की है, सैकड़ों ने की, हजारों ने की, लाखों ने की है, भगवान किसी एक का नाम बतलाने की कृपा करो, एक का नाम बतलाओ भगवान, उसे क्या भूल हुई, वो कैसे भोगों में फंसा, उसकी वृत्ति कैसे बिगड़ गई, उस वृत्ति का परिणाम कैसे क्या निकला, हम थोड़ा सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छा उपदेश दिया, बहुत सुंदर उपदेश। सुखदेव जी महाराज ने उपदेश दिया, राजन सतर्क रहो, सावधान रहो, दूषित कर्मों से बच के रहो। भगवान कौन कौन से कर्मों से, संक्षेप में विवेचन किया, बतला रहे हैं, इमानी चत्वारी, चत्वारी इमानी कर्माणि, विवेचन कर रहे हैं, चत्वारी, चत्वारी इमानि कर्माणि, संध्यायां परिवर्जये, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम। सावधान, इमानी चत्वारी कर्माणी, इमानी कर्माणी चत्वारी, इन चार कामों से संध्या में, संध्या के समय इतने सतर्क रहो, सावधान रहो। संध्या काल में ध्यान देना, व्यक्ति के लिए जितनी भारी घातक ये संध्या है, ध्यान देना, संध्या जीवन को बना भी देती है और संध्या जीवन को बिगाड़ भी देती है। क्यों? ध्यान से, संध्या व्यक्ति के जीवन को बिगाड़ भी देती है और बना भी देती है। संध्या बंधन से ब्राह्मण अपना जीवन बना लेता है, योगी अपना जीवन बना लेता है, अमलात्मा महात्मा जीवन को बिगाड़ लेता है, और असावधान भोगी असावधान व्यक्ति अल्हड़ व्यक्ति जीवन को बिगाड़ लेता है। सावधान संध्यायाम परिवर्जयेत इमानि चत्वारि कर्माणि। महाराज संध्या घातक क्यों है? इसलिए घातक है, सुनना ध्यान से, सूर्य जा रहा है, ध्यान देना, सूर्य जा रहा है, चंद्र आने वाला है, गैप मिला। चोरी कब होती है? जब ड्यूटी बदलती है। चोरी कब होती है? जब ड्यूटी बदलती है। सूर्य जा रहा है और चंद्र आ रहा है, बीच का गैप मिलता है, उस गैप में अक्सर चोरियां होती हैं। आप प्रज्ञा को अपनी ओर, इस भागवत कथा को अपने में घटाओ, अपने में जोड़ो इस भागवत कथा को, कि हमारी भी तो कहीं चोरी नहीं हो रही है। हमने जो सदकर्म किया है, हमने जप किया है, भजन किया है, ये कहीं इसकी चोरी तो नहीं हो रही है। संध्या के टाइम में बहुत सतर्क रहो। यदि ब्राह्मण संध्या के समय में माला जप नहीं करेगा, भजनानंदी साधु भजन नहीं करेगा, कोई आस्तिक ग्रस्त भजन नहीं करेगा, निश्चित है कोई इनको से चूक हो जाएगी। संध्या के टाइम में भगवान शिव निकलते हैं गणों को देखने के लिए, कौन क्या कर रहा है, ध्यान देना। संध्या बड़ी महत्व की चीज है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो वेद के मंत्र से आपको बताऊं। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मनसो जाता केन जाता केन जाता, चंद्रमा मनसो जाता मनसो जाता। भैया जो मन है ना मन, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत। सूर्य और चंद्र, ध्यान देना, सूर्य और चंद्र जब जाएंगे, हमारा मन व्यथित होगा भोग विलासों को देख करके, तो कसतर करो उस समय। उसमें कौन बचाएगा? माला। कौन बचाएगी? ध्यान देना, कौन बचाएगी? माला, भजन, स्तोत्र, पाठ, जाप, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। इमानि चत्वारि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जये। इन चार कामों से बचना, संक्षेप कर रहा हूं। आहारम, संध्या के समय में आहार नहीं करना चाहिए। आहारम भोजनम, सूर्य अस्त हो रहा हो, ध्यान देना, सूर्य जा रहा है, चंद्र आ रहा है, भोजन नहीं करना है। आहारम, निद्राम सोना नहीं है। स्वाध्यायम, स्वाध्याय नहीं करना है। स्वाध्याय करोगे भूल जाओगे, विस्मृत हो जाएगा, वर्जित है संध्या के टाइम में। स्वाध्याय नहीं करो, यहां लिखा है, माच रहा हूं। निद्राम, नींद नहीं लेना, रोग हो जाएगा। आहारम, भोजन नहीं करना है, बीमारी हो जाएगी। मैथुनाम, स्त्री प्रसंग करेंगे तो संतान राक्षसी पैदा होगी, राक्षस पैदा होगा, आदमी पैदा नहीं होगा, बेटा पैदा नहीं होगा। कहने को बेटा है, बेटे की तरह है, लड़का है, आकृति है, पर विचार राक्षसों वाले होंगे। विचार कैसे होंगे? विचार राक्षसों जैसे होंगे। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन परीक्षित, आपने पूछा उसका नाम क्या है, वो कौन है, तो सुनो, उसका नाम है दिति। उसका नाम है दिति से भूल हो गई। संध्या का समय है,
कश्यप यज्ञशाला में बैठे हैं, हवन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। दिति काम से पीड़ित होकर के यज्ञशाला में जाती है और कश्यप से आग्रह करती है। कश्यप ने कहा, देवी समय उचित नहीं है, अनुचित समय है। ये समय भजन का है, संध्या का है, चिंतन का है। भगवान शिव के गण मेरे इष्ट देव भ्रमण कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, इसलिए इस समय तो भूल के भी हम इस प्रवृत्त कार्य में प्रवृत्त नहीं होंगे। यहां विवेचन आ रहा है। लिख रहे वेद व्यास जी महाराज, बतला रहे सुखदेव जी महाराज, राजन परीक्षित बुद्धि पर ऐसा पाला पड़ा, ऐसी बुद्धि विकृत हुई कि उसने अपने पति के वस्त्र को पकड़ लिया, देव को नमस्कार किया कश्यप जी ने, और उसकी आकांक्षा की पूर्ति की। थोड़ी देर के बाद में दिति स्नान आदि से निवृत्त होकर के आई, पति के चरणों में गिर गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ध्यान देना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जीवन में बचो, भूल से बचो। देवी जो तुमने भूल की है उसका तो फल परिणाम सामने आने वाला है। भगवान क्या परिणाम होगा? अरे इसका परिणाम होगा तुमको दो 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 संतान पैदा होगी। एक का नाम होगा हिरण्यकश्यप, एक होगा हिरण्याक्ष। पर इसी कुल में आगे चलकर के एक भक्त भी पैदा होगा जिसका नाम प्रहलाद होगा, जो जगत में अपना नाम करेगा, तुम्हारे कितने कुलों को तार देगा। इसी कुल में आगे चलकर के प्रहलाद होगा। प्रहलाद का नाम सुना तो थोड़ी उसको सांत्वना मिली, अच्छा लगा, चलो कोई बात नहीं, हमसे भूल हो गई लेकिन आगे चल के सुधार ली गई, आगे सुधार ली गई। सुधरने का प्रयास करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भोगों से बचो। बता रहे हैं, अरे कामेन कर्म नाशा स्यात्, कामेन कर्म नाशा स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशा स्यात्, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। कामेन कर्मनाशा, काम से शुभ कर्म नष्ट हो जाता है। क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध से ज्ञान नष्ट हो जाता है। लोभ से भक्ति का नाश हो जाता है। तस्मात् इसलिए त्रयम् त्यजेत्, तीनों को छोड़ दो। गीता भी कह रहा है, गीता भगवान कृष्ण कह रहे हैं, त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशन महात्मना, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं इन तीनों को छोड़ दो, भागवत भी कह रही है कि इन तीनों को छोड़ दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। चलो थोड़ी व्याख्या करता हूं, शुरू में लगता है व्याख्या कर दो और लास्ट में पहुंचते तो हड़बड़ाहट हो जाती है। आइए थोड़ी व्याख्या। कामेन कर्म नाशात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम। महाराज यदि हम काम का परित्याग कर देंगे तो वंश कैसे चलेगा? मैंने जरूरी समझी इसकी व्याख्या। आप ग्रस्त लोग हैं ना, इस साधु कथा सुन रहा होता, साधु समाज होता तो मैं इस विषय को बिल्कुल टच नहीं करता, लेकिन आप गृहस्थी हैं इसलिए मुझे इसकी व्याख्या करने पड़ रही है। महाराज यदि काम नहीं होगा तो परिवार कैसे बनेगा, पुत्र कैसे होगा, और पुत्र नहीं होगा तो पिंडोदक कौन देगा, जलोदक कौन करेगा, पिंड क्रिया कौन करेगा, शायद तर्पण कौन करेगा? ध्यान देना महाराज, यदि क्रोध नहीं होगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? आप बोलो क्रोध नहीं करो तो क्रोध के बिना काम चलने वाला। हमारा तो बेटा रोज सुबह 8 बजे उठता है, महाराज कितना क्रोध करने पड़ता है। आपने बोला क्रोध नहीं करो तो चलो मैं क्रोध नहीं करती, पर बच्चा फेल हो जाएगा,
आपको समझ में आया? ये महाराज बच्चों को फेल करने के लिए कथा नहीं कह रहे हैं, ये पास करने की कथा कह रहे हैं। क्या करो?
तो क्रोध करना कि नहीं करना महाराज?
लोभ करना कि नहीं करना महाराज? जीवन में काम वासना हो कि नहीं हो, एक समस्या बन गई है। व्यवस्था की शास्त्र ने, शास्त्र व्यवस्था भी बनाता है। शास्त्र ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। मैं एक आपको आंखों देखी घटना सुनाऊं। हम सफर में जा रहे थे, रास्ते में पैदल चलते जा रहे थे, किसी गांव में झगड़ा हो रहा था। दो माताएं आपस में खूब लड़ रही थी, झगड़ रही थी बड़ी तेजी से। ये बंबई की नहीं थी, यहां आप बस सोच रहा है बंबई को, यहां की नहीं थी, यहां तो स्वाध्याय में आती, सत्संग करती। ये लड़ेंगी थोड़ी, ये तो आपस में हरि चर्चा करेंगी, वेदांत का चिंतन करेंगी, किसी पिंड की बात, पंजाब की बात। दो माताएं झगड़ रही थी आपस में खूब जोर से। आंखों तक की बात है, सुनी हुई नहीं है। जब वो दोनों आपस में लड़ रही थी खूब जोर से, इतने में एक का बच्चा रोया, आग बबूला थी, उसकी आंखें लाल लाल, कपोल उसके लाल हो गए, चेहरा उसका भद्र हो गया, इतनी उनको गुस्सा थी एक दूसरे को। इसी बीच में एक का बेटा रोने लगा, ऐसा वो चीखा चिल्लाया, और जब रोया बड़ी जोर से तो उसने दौड़ करके बच्चे को गोद में लिया और अपना दूध का पान कराने लगी। बच्चे ने दूध पिया तो बच्चा मर गया। ध्यान देना, बच्चा बेहोश हो गया। क्यों? कि उसके अंदर इतना जहर बढ़ा। ये क्रोध जहर है, ध्यान देना, क्रोध जहर है। जब क्रोध रूपी जहर बढ़ा तो वो जहर आवेश आक्रोश जहर बनकर के स्तन के माध्यम से, जब दुग्ध के रूप से जब उसके अंदर गया तो बच्चा उस ताप को सहन नहीं कर सका और बेचारा मूर्छित हो गया, गिर गया जमीन पे। ध्यान देना, क्रोध इतना खतरनाक होता है। आप कहोगे महाराज तो बस करना आश्रय छोड़ दे, मैं नहीं करें, व्यवस्था बनाई। सुनो ध्यान से, क्रोध करना है पर कितना करना है? कहा बुद्धि के बैलेंस में रहना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए। क्रोध करो पर बुद्धि के संतुलन में रहना चाहिए। आपको होश होना चाहिए कि हम क्रोध कर रहे हैं, हम क्रोध कर रहे, ऐसा आपको होश होना चाहिए। आपके ओठ नहीं फड़कने चाहिए, आंखें विभत नहीं होनी चाहिए, चेहरा आपका विकराल नहीं होना चाहिए, आपका खून गर्म नहीं होना चाहिए, आपका बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। यदि आपका बीपी बढ़ गया, रूप शुरू अभद्र हो गया, तो समझो यही क्रोध घातक है। और जो क्रोध व्यवस्था बनाने के लिए होता है, व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए होता है, वो क्रोध अपने बुद्धि के बैलेंस में होता है। हमें मालूम हो पढ़ते रहना चाहिए कि हम क्रोध कर रहे हैं। कई बार माँ बच्चे को डरपाने के लिए हाथ में चाकू ले लेती है और पीछे पीछे दौड़ती, खड़ा हो जा तेरा पाए पेट फाड़ दूंगी। यदि बच्चा खड़ा हो जाए तो पेट फाड़ देगी है? वो केवल डर पाने के लिए। तो क्रोध ऐसा करना है, इतना करना है। बच्चा यदि आप क्रोध नहीं करोगे तो बच्चा सुबह उठेगा नहीं, स्कूल जाएगा नहीं। कितना क्रोध करना है? शास्त्र ने कहा कि जितना दाल में नमक डालते हो ना, पर एक माप बता देता हूं, इस दाल में बहुत नमक डाल दो तो भी बेकार हो जाएगी, और बिल्कुल नहीं डालोगे तो भी बेकार हो जाएगी। क्या समझी? दाल में नमक बहुत डाल दिया तो बेकार, बिल्कुल नहीं डाला तो बेकार। हिसाब का डालो, जितनी जरूरत है। जिंदगी में ठीक ऐसे ही जरूरत भर क्रोध करो, जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत उतना काम करो, काम आए, और जितनी जरूरत उतना लोभ हो। लोभ काम क्रोध तीनों की मात्रा है, उससे अधिक हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे।
आगे कथा आती है जय विजय की। वो लोग धाम में गए मिलने के लिए चनकादि, वो बीच में डंडा लगा दिया, नहीं जा सकते हो। संक्षेप बातें तो बहुत कहनी थी, नहीं जा सकते। भगवान ने कहा है प्रभु के दरबार में भी, चनकादि ने बोला प्रभु के दरबार में भेद, ये नहीं जाएगा वो जाएगा। अरे दादा से मिलने आया हूं, तुम क्यों नहीं मिलने दोगे? हम जरूर जाएंगे। नहीं जाने दोगे? तुरंत वहां पर श्राप दिया, जाओ तुम यहां के योग्य नहीं हो, जाओ तुम दोनों के दोनों राक्षस बन जाओ। श्राप लगा भाई, द्विति के गर्भ में आए, उनका जन्म हुआ, नाम पड़ा हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। भगवान ने मारने के लिए उनको बरहा का अवतार लिया और बरहा बनकर के हिरण्याक्ष को मार दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, तीन कथाएं कहनी एक साथ में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। निष्कर्ष निकला कि जिंदगी में क्रोध विकार काम नहीं लाओ, क्योंकि द्विती के अंदर ये इष्ट की बात आई तो परिणाम कहां तक पहुंचा है। जीवन को बचाओ, जीवन को बनाओ, अच्छा बनाओ, बड़ी सुंदर बात रहेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे। भोगों से त्याग करो, बचो भोगों से, विलासों से बचो, उनका त्याग करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे त्याग विषय रस रंगा करो मन सत्संगा, त्याग विषय
रस रंगा करो मन सत्संगा,
त्याग विषय रस रंगा करो मन सत्संगा,
त्याग विषय रस रंगा करो मन सत्संगा।
जन्मांतर के पाप धोए ले,
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 बहे ज्ञान की गंगा करो मन सत्संगा।
त्याग विषय रस रंगा करो मन सत्संगा, जन्म जन्म के पाप धोई ले,
जन्म जन्म के पाप धोई ले,
वही ज्ञान की गंगा करो मन सत्संगा,
वही ज्ञान की गंगा करो मन सत्संगा।
देह धर्म तू क्यों अपनावे,
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 ले पतिरंगा झंगा करो रे मन सत्संगा, त्याग विषय रस रंगा
करो मन सत्संगा,
सतगुरु से निज रूप जान ले, सतगुरु से निज रूप जान ले, लख करि हो जा संगा करो रे मन सत्संगा, लख करि हो जा संगा
करो मन सत्संगा।
जय हो
आत्मरूप, सभी राम कृष्ण है,
आत्मरूप सभी राम कृष्ण है,
आत्मरूप सभी राम कृष्ण है,
उठी अज्ञान बेहंगा करो रे मन सत्संगा, जागुक से रसिरंगा
करो मन सत्संगा
हरि कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
हरे
रही उला
हरे राम
जय हो
राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा
हरे
कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
हरे राम
जय
हरे राम 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 हरे हरे
बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम राम राम
हरे हरे
वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। बड़ी सुंदर चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को सुनाया, मैत्रेय जी महाराज ने विदुर को सुनाया। मैत्रेय जी महाराज बोले, राजन परीक्षित, मैं आपको महर्षि कर्दम की कथा सुनाता हूं। राजन कर्दम का मतलब होता है कर दमन, दमन कर जो तुम्हारी इंद्रियां विषयों में जा रही हैं, भोगों में जा रही हैं, विलासों में जा रही हैं, उधर से इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों को मोड़ो, भागती हुई भोगों की तरफ इंद्रियों को मोड़ दो। एक संत से एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज मेरे को भगवान कभी मिलेंगे मिलेंगे? संत ने उससे पूछा, बेटा तेरा कहीं प्यार है? कहीं किसी में तेरा मन लगा है? किसी संसार के पद में, पदार्थ में, व्यक्ति में? वो व्यक्ति बोला, महाराज मेरा मन कहीं नहीं लगा है। महात्मा ने कहा, मैं तेरे को लिख के देता हूं, तुझे कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। क्यों महाराज? इसलिए नहीं मिला। अरे भाई, जिस नदी में कोई प्रवाह नहीं है, धारा नहीं, उधर उसको किधर मोड़ा जाए? जो नदी सूखी पड़ी हुई है, सुनना ध्यान से, जो नदी सूखी पड़ी है, जिसमें कोई धारा ही नहीं है, जिसमें कोई प्रवाह ही नहीं है, अरे उसे कैसे मोड़ा जाए? स्त्री में प्रेम है, प्रेम की धारा बह रही है। पति में प्रेम है, प्रेम की धारा बह रही है। पुत्री में प्रेम है, धारा बह रही है। पुत्र में प्रेम है, धारा बह रही है। धन से प्रेम है, दौलत से प्रेम है। अरे कहीं प्रेम है तो इस प्रेम की धारा को मोड़ करके हम भगवान से जोड़ सकते हैं, और जहां कोई धारा ही नहीं है, उसे हम कैसे मोड़े, कैसे मोड़े? धारा होना बहुत जरूरी है। जो शुष्क है, नीरस है, ऊसर भूमि है, रेगिस्तान है, अरे ऊसर में कभी बीज बोए जाते हैं? कभी ऊसर में कुछ उगता है? कभी नहीं उगता है। बड़ी अच्छी बात सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समझाई। राजन परीक्षित, जहां पर इंद्रियां लगी हैं, जिन भोगों में लगी हैं, जिन विषयों में लगी हैं, इसलिए राजन कर्दम का मतलब ही होता है दमन कर, उन भोगों की ओर से इंद्रियों को मोड़ो। यदि आपने इंद्रियों को मोड़ दिया, भगवान में जोड़ दिया, तो आप कर्दम हैं, तो आप कर्दम हैं। प्रयत्न करो, हम कर्दम बन जाएं। हम क्या बन जाएं?
मेरे प्यारे भाइयों, आप प्रयत्न करो कि हम करदम बन जाएं। हमारी प्यारी बहनें प्रयास करें कि हम देवहूति बन जाएं। क्या बन जाएं? देवहूति का अर्थ जानते हो? देव, आहुत, हुत माने बुलाना, हुत माने बुलाना, देव माने परमात्मा, देव माने परमात्मा, हुत माने बुलाना। परमात्मा को जो बुलाता है, अरे वही तो देवहूति है, वही तो। मेरी माताओं, आप बन जाओ देवहूति, हमारे प्यारे बंधु बन जाएं करदम। गिरीश जी, करदम बन जाओ, कितनी सुंदर बात, करदम बन जाओ, देवियां देवहूति बन जाएं। ध्यान देना, भगवान ने कहा, ये दुनिया के लोगों, मैं तो अपने दोनों हाथों को फैला के खड़ा हूं, दोनों हाथ फैला के खड़ा हूं। अरे मेरी कोई जगत की मां कौशल्या बनके आ जाए, कोई देवकी बनकर के आ जाए। भगवान कह रहे हैं, मैंने तो दोनों हाथ खोल रखे हैं कि कोई मेरी मां कौशल्या बन जाए, देवकी बन जाए, जशोदा बन जाए, तो मैं उसकी गोद में आने को तैयार हूं। लेकिन मैं देखता हूं, भगवान कह रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं, हम जिस गोद में जाने के लिए झांकता हूं, उस गोद में हमें देखने को कुत्ता और पिल्ला बिल्ला बिल्ली नजर आते हैं। जिस गोद में भगवान को होना चाहिए, जिस गोद में भगवान को खेलना चाहिए, उस गोद में भैया बिल्ली बिल्ला कुत्ता खेल रहे हैं। अरे ये गोद कुत्तों खिलाने के लिए नहीं है। हमने अच्छे अच्छे परिवारों में देखा, हमारी संस्कृति भ्रष्ट हो गई है, हमारी सभ्यता चरमरा गई है। अरे कुत्तों के झब्बे झब्बे बालों वाले पिल्ले कुत्ते, अफसोस की बात है, माताएं अपने बच्चों को स्वयं नहीं खिलाएंगी, उसके लिए दाई रखी है, नौकरानी नौकर रखा है। अपने बच्चों को स्वयं नहीं खिलाएंगी, नौकर नौकरानियां दाई खिलाती है, लेकिन वो झब्बे झब्बे बालों वाला कुत्ता का पिल्ला जरूर खिलाएंगी। दुनिया भ्रष्ट हो गई है, बदल गई है, समझो, सीखो भागवत से। ये भागवत आपका जीवन है, शास्त्र दर्पण है। कहां तुम्हारे में विकृति है, कहां तुम्हारे में विकार है, वो तुम्हारा दर्पण बताएगा। दर्पण क्यों देखते हो? चेहरे में कोई दाग धब्बा? वो दर्पण कह देता कि तुमको यहां दाग धब्बा है, उसको ठीक कीजिए। ये श्रीमद् भागवत एक दर्पण है, और दर्पण के माध्यम से आप देखो मेरे में कहां न्यूनता है। यदि आप में कोई न्यूनता नजर आती है तो ठीक कीजिए। हमारे प्रेमपुरी के ट्रस्टियों ने, हमारे गिरीश भाई ने, हमारे इन भैया ने, हमारे प्रकाश भैया ने, हमारे सभी ट्रस्टियों ने हमें बुलाया, यूं ही नहीं बुलाया है। यूं नहीं, इनका प्रयास है कि आप इनको दर्पण दिखाओ। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात, बहुत अच्छी बात। दर्पण को श्रीमद् भागवत दर्पण है, देखो कहां कमी है, कहां विकृति है, उसको ठीक करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई त्रुटि है, सोचो, चिंतन करो, विचार करो, आज के परिवेश और वातावरण में अपना बेटा अपनी सेवा क्यों नहीं करता है? आज बहुत वृद्धाश्रम खुलते चले जा रहे, क्यों? बातें तो बहुत कहने की, मैं क्या करूं, है? इस दिमाग में इतनी बातें भरी हुई हैं, एक कंप्यूटर से कम नहीं है। जब समाज की बात करूंगा तो समाज की बातें यहां पर सब लागू कर दूंगा भागवत में। हमने घाट कूपर में कथा की थी, राजावाड़ी में चातुर्मास की कथा की थी, और कृष्ण जन्म चार महीने बोला, और केवल कृष्ण जन्म से उद्धव चरित्र की ही उपाय कथा। एक प्रसंग के चार पक्ष कहता था, कथा पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और अध्यात्म पक्ष। एक एक कथा के चार पक्ष बोला करता था, इसमें अध्यात्म भी है, इसमें व्यवहारिक पक्ष भी है, इसमें सामाजिक पक्ष भी है, इसमें अध्यात्म पक्ष भी है। हम दो घंटे में क्या क्या सुना दें आपको? कभी खुली कथा करेंगे यहां, गिरीश भाई, खुली, तब आपको सुनाएंगे महीनों तक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। सुनो बड़े प्रेम से सुनो, कितने 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 कितनी मात्रा में आज वर्तमान परिवेश में वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। ये क्यों बनाए जा रहे हैं मालूम आपको? ये क्यों बन रहे हैं? यही तो कारण है, यही तो कारण है कि जब तुमको बच्चे को संस्कार देना था तब तुमने बच्चे को संस्कार नहीं दिया। जो संस्कार देना चाहिए था वो तुमने संस्कार नहीं दिया। आप कहीं चूक गए, कहीं आपसे भूल हो गई है, कहीं आपसे त्रुटि हो गई है। यदि तुमने बच्चे को संस्कार दिया होता तो जन्मने के बाद अफसोस की बात है कि जब बच्चा जन्मता है, माँ अपना पैपान नहीं कराती, अपना दूध नहीं पिलाती है, बोतल थमा देती है पी। जब बालक बड़ा होता है, ध्यान देना, माँ का तो दूध पिया नहीं है, वो माँ की सेवा कहां करेगा? वो कहता है मैं माँ की सेवा जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। थोड़ा जब बड़ा होता है, दूध की बोतल शराब की बोतल बदल जाती है, वो बगल में दबा के लाता है, मेरी मम्मी मेरे साथ है। रूप बदला है, पहले दूध भरा था, शराब भरी है। समझो बात को, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए लौट करके आइए, वापस आओ। सुनो बड़ी सुंदर बात, बड़ी अच्छी बात। भगवान बोले मैं दोनों हाथ अपने ऐसे किए हूं, पर मुझे कोई कौशल्या सुमित्रा जसोदा देव की नजर नहीं आ रही। अरे मैं तो गोद में जाना चाहता हूं पर क्या करूं। कपिल भगवान आने वाले हैं ना, हमें कोई देवहूति मिल जाए। भगवान बोले मैं उसकी गोद में जाने को तैयार हूं पर मुझे कोई देवहूति नजर नहीं आ रही है। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब देखता हूं तो उन गोद में कुत्ते खेलते नजर आ रहे हैं, और जहां कुत्ता खेलेगा उस गोद में कन्हैया कैसे आएगा? कपिल भगवान कैसे आएंगे? राम जी कैसे आएंगे? आएंगे? सुधारो अपने को। मैं तुमको इस मंच से चैलेंज पूर्वक कहता हूं, यदि अपने को सुधार लो तो तुम्हारे घर बालकृष्ण जरूर आएंगे, राम जी जरूर आएंगे, कपिल जी भगवान जरूर आएंगे, निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे, निसंदेह आएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, मैं अर्थ कर रहा था किसका? देवहूति। किसका अर्थ कर रहा था? ये केवल देवहूति का अर्थ हुआ अभी तक। देवहूति का अर्थ है देव को बुलाओ, आहुत करो, परमात्मा को बुलाओ। कर्दम का मतलब है इंद्रियों का दमन करो। जब इंद्रियों का दमन हो जाएगा, स्वाभाविक भाव पर देवों का आवाहन होगा, देव आएंगे। कर्दम देवहूति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा विवेचन आ रहा है, थोड़ा सुन लीजिए। विवाहो ना बिलासार्थम, अरे विवाहो ना बिलासार्थम, धर्मार्थमेव केवलम, तेजो बुद्धि बलम ध्वंसो, तेजो बुद्धि बलम ध्वंसो, विलासात प्रवृतते खलु। उपदेश दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने, विलास विवाहो ना विलासार्थम। विवाह विलास के लिए नहीं होता है, ध्यान देना, विवाह विलास के लिए नहीं होता है। ये किसके लिए होता है? धर्मार्थम, धर्मार्थ में भी केवलम। अरे भाई बड़ी सुंदर, बहुत प्यारी प्यारी व्याख्या है, क्या करूं? सुनो ध्यान से, पति और पत्नी दोनों क्या है? ये साक्षात विष्णु और लक्ष्मी का स्वरूप है। इनका साम्य, इनका मिलन साक्षात विष्णु लक्ष्मी का। और जब शादी होती है, आपको मालूम है, तब पंडित जी बुलवाते हैं, संकल्प मंत्र करवाते हैं शादी के समय पर। ये नहीं कहते अमुक छोकरा अमुक छोकरी है। संकल्प मंत्र में क्या बोला जाता है? बूढ़ा पूरा मंत्र नहीं बोलूंगा, लंबा पड़ जाएगा। बेटी से कहलाते बेटी बोल,
बेटे से बोलते हैं, बर से बोलते बेटे बर बोलो,
बर बोलता है बरऊ असौ लक्ष्मी रूपेण, बरऊ असौ लक्ष्मी रूपेण, मैं लक्ष्मी के रूप में इस देवी को इस कन्या को वर्णन करता हूं। बरऊ असौ लक्ष्मी रूपेण, उन्होंने कहा लक्ष्मी रूपेण, तो लड़की बोलती बरऊ असौ विष्णु रूपेण, हमारे यहां विष्णु लक्ष्मी की शादी होती है, छोकरा छोकरी की नहीं होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आइए सुनिए, बहुत बड़ा तप किया है कर्दम जी ने, भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ है, बरम ब्रूही बर मांगो, यहां लिखा है 100 वर्ष तप किया, बर मांगो। कहा कि हमको वर के रूप में, कर्दम जी ने कहा हमको लायक पत्नी दे दो, उत्तम पत्नी, हमको क्या दे दो, उत्तम पत्नी, श्रेष्ठ पत्नी, जिससे हम अपने गृहस्थ को यथाविधि चलाते हुए अपना जो मोक्ष पद है उसकी प्राप्ति कर ले। एक कथा गृहस्थ की है, किसकी है, गृहस्थ की, जरूर सुननी चाहिए, तथास्तु ऐसा ही होगा। आज के तीसरे दिन मनुजी महाराज की जो कन्या देवहूति है, मनुजी महाराज लेकर के आएंगे तो आप उसको स्वीकार कर लेना, क्योंकि आपके संदर्भ में नारद जी के माध्यम से बड़ी अच्छी चर्चा सुन रखी है, उसने निश्चय कर लिया है हम किसी राजकुमार के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो किसी ऋषि कुमार के साथ करूंगी, स्वीकार कर लेना।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे श्याम।
सुनो बड़े प्यार से सुनो, है आप ऐसा करना, मैं सच बताऊं ये क्यों रुकता हूं, वो घड़ी सामने आ जाती इसलिए मेरे दिमाग पर चकरा जाता है कि अभी इतनी बातें कहनी है और ये कैसे हो पाएंगी, क्या तो मैं आंखें बंद ही रखू तो ठीक है। आज गिरीश भाई ऐसा ही हुआ, सुबह की कथा में मैंने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके मैंने विदुर जी का प्रसंग कहा, पूरा टाइम 10 बज गया उसी में लगे रहे,
इतना मैं भय गया, इतना भय गया, एक घंटा करीबन 1 सवा घंटा के आसपास वो विदुर प्रसंग चला,
तो वो दिमाग यूं जाता तो फिर तुरंत एकदम यूं हो जाता है, अरे टाइम हो रहा है तो इसे खत्म करो, अगले वाला प्रसंग पकड़ो।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की,
कन्या को लेकर के मनु महाराज आए हैं, बढ़िया सुंदर प्रकृति का वर्णन आया है कि वहां की कैसी छटा है, क्या वहां की छवि है, पक्षी कलर कर रहे, क्रीड़ा कर रहे, बढ़िया सुंदर तालाब है, क्या प्रकृति की बढ़िया सुंदर नजारा, वृक्ष आदि सब, उसका भ्रमण करते हुए मनु महाराज अपनी पुत्री को लाए, सातम पत्नी को लाए, और जब आते देखा तो 3 आसन बिछा दिए, आइए विराजिए, मनु जी बैठे, शत्रुपा जी बैठी, लेकिन देवहूति नहीं बैठी, बैठी पर अपने ढंग से बैठी, उन्होंने सोचा कि ये पति जो होने जा रहा उसके द्वारा दिया गया आसन है, बैठती हूं तो उनसे सेवा हो जाएगी और नहीं बैठती हूं तो अपमान होता है, क्या करें, तो दाहिना हाथ आसन पर रखा, जमीन में बैठ गई। कर्दम जी बोले बस हो गई परीक्षा, ठीक है पास है, पास है, पास कर दिया, ध्यान देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, शादी बढ़िया सुंदर, यहां पर चर्चा आई, ब्रह्मदेव जी महाराज आए हैं और बढ़िया सुंदर शादी कराई है, लामे फेरे वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ है, शादी बढ़िया संपन्न हुई, कन्या को देकर के चले गए, शादी हो गई, शत्रुपा जी खुश हैं, कर्दम जी भी खुश हैं, देवहूति कर्दम दोनों प्रसन्न हैं एक दूसरे से, शादी के बात में खींचातानी नहीं होनी चाहिए, मनों का मिलना बहुत जरूरी है, यदि मन नहीं मिलेंगे तो वो शादी नहीं बल्कि बर्बादी हो जाएगी, दोनों का मनों का तारतम्य एक होना चाहिए, 2 शरीर एक प्राण एक मन होना चाहिए। माला का तात्पर्य क्या, माला पहनने का मतलब है ये शरीर आपका
और ये शरीर आपका, आप दोनों एक हो गए। मीठा खिलाने का मतलब क्या है कि ये वाणी मेरी और वो वाणी मेरी, आपकी वाणी मेरी, मेरी वाणी आपकी, दोनों की वाणी एक। ये सब मीठा खिलाने का तात्पर्य होता है, बड़ी बातें हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बड़े शादी से प्रसन्न है, कोई कहीं खिन्नता नहीं है। हम पंजाब में की कथा कह रहे थे, एक बालक उठ के खड़ा हुआ, बोले महाराज मैं भी शादी से बहुत खुश हूं। बेटे होना ही चाहिए, तू कैसे खुश है? बोले महाराज मैं क्या बतलाऊं, हमारी शादी हुई, हमारी जो पत्नी है वो चंद्रमुखी है। क्या है? इतनी सुंदर है। हम दो महीने बाद फिर गए तो बोले महाराज व्याख्या गलत हो गई थी। क्यों? बोले महाराज वो चंद्रमुखी नहीं, वो तो सूरजमुखी है। छह महीने बाद गए, वहां पर भक्त थे मिलने के लिए, तो पहले मिठाई का डिब्बा लिफाफा लाया, दूसरी बार में खाली डिब्बा लाया, तीसरी बार में कुछ भी नहीं लाया, प्रणाम किया। मैंने कहा बेटे सब ठीक ठाक परिवार चल रहा है? बोले महाराज दूसरी बार व्याख्या गलत हो गई। सच में आपको बात बताऊं, ना तो वो चंद्रमुखी निकली, ना वो सूरजमुखी निकली, वो तो पक्की ज्वालामुखी निकली। मेरे प्यारे बंधुओं, नारी पत्नी ज्वालामुखी नहीं होती है, ज्वालामुखी नहीं होती है, वो तो प्रेम सदृश होती है। नारी भक्ति का रूप कहा गया है हमारे शास्त्रों में, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जहां पर ऐसी देवी होती वहां देवता रमण करते हैं। आइए आगे बढ़िए। बड़ो कृष्ण कन्हैया लाल की शादी हो गई। शादी होने के बाद में कुछ इच्छाएं थी, चर्चा आई है कि बड़ी सुंदर सेवा की देवती ने, ऐसी पति की सेवा की जटाएं बन गईं, वस्त्रों का स्वरूप शरीर कृष्ण हो गया। कर्दम जी बड़े खुश हुए, प्रभावित हुए सेवा से, बहुत सुंदर उनकी सेवा को देख करके, इस सरोवर में स्नान कीजिए, ये विमान है, चल बैठिए। भ्रमण किया, सुनना ध्यान से, भ्रमण किया, भ्रमण करो गलत नहीं है, लेकिन ईश्वर से हटके नहीं, ईश्वर को भूल के नहीं, ईश्वर को याद रखो। यदि ईश्वर को याद रखोगे तो नब्धा भक्ति पैदा होगी। कौन पैदा होगी? भ्रमण करके आए तो क्या हुआ? नौ कन्याएं हुई। कितनी कन्याएं हुई? वो कौन है? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अरे श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। नौ कन्याएं हुई, श्रवणम कीर्तन विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नौ कन्याएं नौ भक्ति के रूप से प्रकट हुई। कर्दम जी बोले देवी शादी के टाइम पर हमारी आप कोई बात हुई थी ना? हाँ हुई थी। क्या बात हुई थी? संतान होने के बाद जंगल में चला जाऊंगा, घर में नहीं रुकूंगा, अब हो गया, अब संभालिए मैं जाती हूं। अब मैं जाती हूं, जाता हूं। कर्दम जी बोले अब मैं जाता हूं। देवभूति ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी प्यारी बात कही। सुनो ध्यान से, आप भी सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बड़ी सुंदर बात की। आपने कहा था, पर क्या कहा था याद कीजिए। बोले उत्पाद्य पुत्रान अनिश्चिकृत्वा वृत्तिम चतेभ्यो विधाय काचित स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा तदनंतरम मुनिर्बुभूषेत। ये बात हुई थी। उत्पाद्य पुत्रान अनिश्चिकृत्वा, गृहस्थ का कर्तव्य है, कर्तव्य को समझिए, कितनी अच्छी कर्तव्य की बात आई। बोले उत्पाद्य पुत्रान अनिश्चित कृत्वा, साधु बन जाओ, मुनि बन जाओ, वानप्रस्थ में चले जाओ, लेकिन कब? बोले पुत्र उत्पन्न किए हैं, पुत्रियां उत्पन्न की हैं, उत्पाद्य पुत्रान अनिश्चित कृत्वा, उस पर कोई ऋण छोड़ के नहीं जाना, पुत्रियों की शादी करके जाना। वृत्तिम चतेभ्यो विधाय काचित, उनकी जीविका को चलाने की कोई वृत्ति देख के जाओ,
सर्विस नौकरी व्यापार धंधा कुछ बच्चों करा के जाओ। वृत्तिम चतेभ्यो विधायकाचित स्थाने कुमारी प्रतिभाद्य सर्वा, कुमारियां हैं उनकी शादी करके जाओ। तदनंतर मुनिर्भूषेत, फिर मुनि बन के घर से निकल जाना चाहिए। अभी तो बेटा आया ही नहीं, आप जाने की बात करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की भगवान की कृपा हुई, अब की बार बड़े सजग हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, दोनों ईश्वर का वंदन करते हैं। देवी के अंदर वो तेज आया है और तेज आने के बाद में अवधि के पूर्ण होने पर एक बहुत अच्छा सुंदर बालक, एक सुंदर बालक प्रादुर्भूत हुआ जिसका नाम कपिल रखा गया। बोलो कपिल भगवान की, नाम रखा कपिल। कर्दम जी ने उसकी परिक्रमा की, भगवान है ना, सब वचन दे दिया गया था, पहले बात हो गई थी, प्रणाम किया और देवी से कहा हम जाते हैं। कपिल से कहा कि माता को मैं आपको सौंपता हूं, आपकी माता को आपको सौंपता हूं, इनकी देखरेख आप कीजिए, अब मैं जंगल में जाऊंगा जैसा मैंने निर्णय किया था। कपिल जी ने कहा ठीक पिताजी, कोई बात नहीं, आप जाइए। जंगल में गए, ऋषि महर्षि उस समय कई एक आए थे और सब कन्या उनको वहां दे दी गई, भिन्न भिन्न कन्याओं को प्रदान कर दिया गया, इन दायित्वों से मुक्त हो गए। जंगल में गए, साधना की, उस परम तत्व की प्राप्ति की। इधर थोड़ा संक्षेप करें, उपदेश दिया देवभूति को, बड़ा लंबा सुंदर बहुत अच्छा उपदेश दिया गया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस प्रकार से उपदेश दिया। अपने इंद्रियों का संयमन करो, आगे उपदेश दे रहे हैं। शांख का उपदेश दिया कपिल जी महाराज ने, प्रकृति और पुरुष दो है, प्रकृति पर पुरुष चेतन है पर उदासीन है, पुरुष का प्रकृति पर प्रतिफलन पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है, उसमें स्पंदन होता है, महत्व की उत्पत्ति हुई, पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, पंच महाभूत, पृथ्वी तल तेज वायु आकाश, 24 तत्व उत्पन्न हुए, 25वां पुरुष, इस प्रकार से ये सब उत्पत्ति होती है। आगे देवी ने मां ने प्रश्न किया, बेटा कहने को तू मेरा बेटा है पर साक्षात तू ब्रह्म है, बस यही आकांक्षा करते हैं कि मेरी मृत्यु, मेरा मन तू भोगों से हटा दे, विलासों से हटा दे, मेरा मन विलास और भोगों से हट जाएगा। मां को बहुत सुंदर उपदेश दिया श्री कपिल जी महाराज ने, समझाया ये मां, ये जो शरीर है इसमें आसक्ति मत करो, मोह मत करो, इसकी ममता का परित्याग कर दो। गात्रम संकुचितम, उपदेश दे रहे हैं, गात्रम संकुचितम गतिर विगलता भ्रष्टा चरंतावली और दृष्टि नश्यति वर्धते बधरता वक्त्रम चलालायते हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वैसा और पुत्रो भी मित्रायते। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कहीं मन को मत लगाओ, कहीं मन को मत फंसाओ। अरे शरीर देखने में कितना अच्छा लगता है लेकिन बुढ़ारे आने पर झुर्रियां पड़ जाती है, शरीर की बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है, ये देखने लायक नहीं रहता है। जिसे क्रीम पाउडर से सजाते हैं अच्छा, दर्पण के सामने खड़े होकर के एक दिन हमको इसको दिल नहीं करता इसे देखने का। मां मां इससे विरक्ति पैदा करो, ये शरीर कुछ भी नहीं है, ये भजन करने का उस तत्व को पाने का साधन है, साधन में अटकना नहीं है, साधन को छोड़ करके उस परम तत्व की प्राप्ति करना है। साधन तो केवल संतरण के लिए होता है, मां शरीर तो केवल साधन है, साधनी है, शरीर कोई बहुत अच्छा भी नहीं है, शरीर क्या है, इसी श्लोक का अनुवाद है। अरे आंख पे तने गा जाला, आंख पे तने गा जाला और नाक से बहेगा नाला और लकड़ी से पड़ेगा पाला, अरे जरा जिंदगानी में, अरे खड़े खड़े वस्त्रों में, खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे तुम, और राम नाम लेने में तुम्हारी बंद बाणी है। तो योग से योग करो, योग से योग करो और भोग से वियोग करो, सो कर लो भजन भगवान का जवानी में। माँ प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, माँ प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि अब अरे आज ही अभी तुरंत इसी क्षण हमने उधर लग जाना है। श्री सुखदेव जी महाराज ने मन को वहां से मुड़वाया है और मन को मोड़ करके ईश्वर में जुड़ाया है, बढ़िया दिव्य सुंदर साधना कराई है। यहाँ पर अनेक आश्रमों का वर्णन, धर्मों का वर्णन, बड़ी लंबी विशद व्याख्या है, मैंने आपको संक्षेप में इस चरित्र को सुनाया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। मुख्य बात आई कि इसमें मन नहीं लगाना है, संसार में मन मत फंसाओ, ये संसार मन के लगाने लायक नहीं है। यदि मन कहीं लगे तो उस परब्रह्म में लगे, यही निष्कर्ष और सारांश इस कर्दम देहूती संवाद का निकला है। तो अपने मन को मोड़िए और भगवान में जोड़िए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे मन तज मेरी, मेरी ना होगी यह तेरी, मन
मन तज मेरी, मेरी ना होगी यह तेरी,
मन तज मेरी, मेरी ना होगी यह तेरी,
मन तज मेरी, मेरी ना होगी यह तेरी।
जानत है पर मानत नहीं,
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 करे भजन में देरी न होगी यह देरी,
भजन में तेरी ना होगी यह तेरी,
मन तज मेरी, मेरी
ना होगी यह तेरी, मन तज मेरी, मेरी ना होगी यह तेरी।
चार दिना की रात उजेरी,
रात दिना की रात उजेरी,
चार दिना की रात उजेरी,
फिर हो जाए अंधेरी ना होगी यह तेरी, फिर हो जाए अंधेरी ना होगी यह तेरी। तेह मान अभिमान में डूबा,
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 होए खाकी की ढेरी न होगी यह तेरी,
होए खाकी की ढेरी न होगी यह तेरी।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मणानुदितो सृष्टौ ब्रह्मणानुदिता सृष्टौ अत्री ब्रह्मविदाम्बरा सह पत्न्याया वृक्षम् कुलांगी तपसि स्थिता। श्री मैत्रेय जी महाराज विवेचन करते हैं, राजा परीक्षित को सुखदेव जी सावधान करते हैं। सावधानी बहुत जरूरी है। बोले ब्रह्मणानोदितो श्रेष्ठौ, सृष्टि की वृद्धि, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दायित्व मिला है, कुछ न कुछ दायित्व मिला है। अपने अपने दायित्व को निर्वहन करने के लिए सभी प्रयत्नशील हैं, सभी प्रयास करते हैं। ब्रह्मा को भगवान ने सौंपा है सृष्टि का सृजन करना, सृजन करो सृष्टि का। ब्रह्मा ने बड़ा प्रयास किया। सृष्टि कई प्रकार की बतलाई गई है। अंडे से सृष्टि बतलाई गई, सुनना ध्यान से, मैं संक्षेप करूंगा। अंडे से सृष्टि बतलाई गई, हमारे पुराणों में बतलाया गया है। न्याय की सृष्टि, ध्यान देना, सांख्य की सृष्टि, पुराण की सृष्टि और वेद की सृष्टि, सृष्टियों की प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा अवांतर है, भेद है, थोड़ा भेद। न्याय दर्शन कहता है, सब सुनना चाहिए, चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, शास्त्र है। शास्त्र में कहा गया है, न्याय दर्शन कहता है, क्षिति अंकुरादिकम कर्तृजन्या, क्षिति अंकुरादिकम कर्तृजन्या कार्यत्वात् घटवत्। अनुमान, क्षिति अंकुरादिकम कर्तृजन्या कार्यत्वात् घटवत्। पर्वतो बन्निमान धूमात्, पर्वतो बन्निमान धूमात्, क्षिति अंकुरादिकम कर्तृजन्या कार्यत्वात् घटवत्। क्षिति पृथ्वी, ध्यान देना, सृष्टि की बात कर रहा हूं। क्षिति, इस पृथ्वी में मैं देखता हूं कि अंकुर उगता है, किसान ने खेती को जोता और जोतने के बाद में अन्न डाला, अंकुरित हुआ। क्षिति अंकुरादिकम, क्षिति माने पृथ्वी, अंकुर पैदा हुआ। क्षिति अंकुरादिकम करेत्रजन्या, कोई न कोई करता है, कोई न कोई करता है। कार्यत्वात्, क्योंकि कार्य है, कार्यम दृष्टा कारणम अनुमीयते, यदि कार्य है तो उसके पीछे कारण जरूर होता है। अब मैं सृष्टि कह रहा हूं न्याय की, न्याय दर्शन में क्षिति अंकुरादिकम कर्तृजन्या कार्यत्वात् घटवत्। घटवत, घट को देखा तो घट को देख करके, घट माने घड़ा, घट माने घड़ा, घड़े को देख करके हमने समझ लिया कि कोई कुलाल है, कोई कुम्हार है। वस्त्रों को देखा तो कोई जुल्हा है। कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। कार्यम दृष्टा कारणम अनुमीयते, किसान अंकुरों को देखा तो किसान का अनुमान लग गया। न्याय दर्शन नास्तिक दर्शन है, सुनना ध्यान से थोड़ा है। अब दर्शन की बात आ गई तो हमको उसी शैली में बोलना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। अरे भाई, किसी खेत में आप नवरात्रों में, सरल कर देता हूं, जब आप जौ बोते हैं, क्या बोते हो, बोते हो ना, एक पात्र में रेत मिट्टी डालते हो और उसमें बीजों को बो देते हो, अंकुर उग आता है। करता कौन है, बोने वाला कौन हो आप,
कार्य क्या हुआ? जव का उगना। जव उगा, करता है आप, करता है आप। नाई दर्शन बालों से पूछा, भाई तुम कहते हो कि कोई करता है, कौन व्यक्ति करता है अथवा किसान करता है? हम तुमसे पूछते हिमालय के शिखर पर ऊपर, ध्यान देना थोड़ी, हिमालय के शिखर पर ऐसे ऐसे पर्वत के शिखर हैं जिन शिखरों पर आदमी कभी नहीं जा सकता है, कभी नहीं जा सकता। ए न्याय दर्शन वालों, ये बतलाओ कि जब आदमी वहां कभी नहीं जा सकता उस शिखर पर वहां पेड़ खड़े होते हैं, बोलो किसने उगाई? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, इन पेड़ों को किसने उगाया? अब बेचारा चुप हो गया न्याय दर्शन वाला, आदमी जा नहीं सकता है। आदमी एक नास्तिक दर्शन थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, कैसे होते हैं? किन्नी किन्नी खोपड़ी थोड़ी ऐसी ही चलती है, ज्यादा चल जाती है। कुछ हुज्जत बात लोग होते हैं ना। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था और जाते जाते बोल पड़ा, उसको जा रहा था, उसके पैर में ठोकर लगी, वो गिर गया। उसने कहा, हे परमात्मा तूने क्या किया, तूने आंखें खोपड़ी पे लगा दी, यहां पर इतनी होती, पैरों में तो कितना अच्छा होता, ठोकर नहीं लगती, मेरा अंगूठा नहीं टूटता, अंगूठा नहीं टूटता, अब तूने चिपका दी माथे पे, चोट लग गई, खून निकल आया। भगवान, आपको इतना ही बोध नहीं था कहां आंख लगानी चाहिए? अब कुछ देरी के बाद में आगे और बढ़ा तो इतना वाला दलदल मिल गया, पानी भरा हुआ कीचड़, अब उसे कीचड़ में घुसने पड़ा। उसे अकल आई कि यदि कहीं पैर में होती आंख तो कीचड़ में घुसे तो फूट जाती, ये तो आंख फूट जाती, भगवान तूने अच्छा किया यहां लगा दी, नहीं तो काम खराब हो जाता, नहीं तो काम। ऐसे कितने लोग इस प्रकार के होते हैं न्याय दर्शन वालों की तरह, सुनना ध्यान से, ऐसी इस टंकी न्याय दर्शन ने कहा, छिति अंकुरादिकम करित्र जिन्ना कार्य त्वाद घटवत, हमने घड़े को देखा, करता है तो कारण कोई जरूर होगा। अरे भाई तू ये क्यों नहीं बोल लेता भगवान ने किया है? ऐसा क्यों बोलूं भगवान ने किया? भगवान तो मानता ही नहीं। न्याय दर्शन, ध्यान देना, शंख दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन, ये छह दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, ये भगवान को मानते ही नहीं। भगवान को इनकी सृष्टि ऐसी, कुछ परमाणु से मानते हैं, दृढ़ुक्त श्रेणु चेणु, मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि व्याख्या करूं? टाइम हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो। हर हर महादेव, पुराण की सृष्टि अंडे से हुई, बड़ा अंडा था टूटा ओसे हुआ। भागवत में सृष्टि बतलाई गई है, भगवान विष्णु जी समुद्र में लेटे हैं, नाभि से एक बढ़िया सा सुंदर कमल निकला है और कमल ऊपर गया है, ब्रह्मा जी बैठे, ब्रह्मा जी रोए, नीचे आए पता नहीं चल पाया, फिर ऊपर जाके रोने लगे, आवाज आई तो कहा कि तू सृष्टि कर, वो रोए तो उसे रुद्र पैदा हो गई। कौन पैदा हो गए? वहां से सृष्टि शुरू हो गई। ये भागवत की सृष्टि संक्षेप कर रहा हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यहां थोड़ी और सृष्टि बताई, इसको भी देख लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, मरीचि अत्रिशौ अंगरौ पुलस्त पुलकृतु भृग वशिष्ठ दक्षस्त दशमस्तत नारद। ये सृष्टि हुई, ब्रह्मा के मन से मरीचि को पैदा किया गया, नेत्र से अत्रि को पैदा किया, मुख से अंगरा को पैदा किया, कान से पुलस्त को पैदा किया, नाभि से पुलह को पैदा किया, कर से कृतु को पैदा किया, त्वचा से भृगु को पैदा किया और प्राण से वशिष्ठ को, अंगूठा से और उष्मा ने गोश से नारद जी को पैदा किया, दक्षिण स्तन से धर्म को, पृष्ठभाग से अधर्म को, हृदय से काम को, भ्रू से क्रोध को, अधरों से लोभ को, अमुख से वाणी को, छाया से कर्दम जी को उत्पन्न किया। ये सृष्टि मैंने आपको बतलाई, अब आपको और संक्षेप में 84 लाख पूरी सृष्टि गिना देता हूं। संक्षेप में
बुल स्थावर विंशति लक्षम स्थावर विंशति लक्षम जलगमनम लक्षकम अक्रिमिच लक्ष्यश्च क्रिमिश्चिरुद्ध लक्षम च दक्ष लक्षम च पक्षिणा त्रिश लक्षम पशूनाम चतुर्लक्षम च बानरा ततो मनुष्यताम प्राप्तो तथा कर्माणि साधये। गिन लो स्थावर विंशति, स्थावर जो जीव हैं वो 20 लाख हैं, जल में रहने वाले 9 लाख 9 हैं, 9 लाख गिनते जाना, गणना आप करोगे बोलता हूं मैं। 20 लाख स्थावर हैं, जल में रहने वाले 9 हैं, गिनते जाना। कृमि, कृमि जो कीड़े वगैरह हैं वो 11 लाख हैं, और 10 लाख जो हैं वो पक्षी हैं, और 30 लाख पशु हैं, और 4 लाख प्रकार के बंदर हैं। उसके बाद में मनुष्य का नंबर आता है 84 लाख योनियां हो गई। मैंने 60 कथा कह दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। अभी भी संतुष्टि नहीं हुई ब्रह्मा जी महाराज को। सुनो ध्यान से, जब संतुष्टि नहीं हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी क्या बोले, अरे ब्रह्मणा नोदितो श्रेष्ठौ अत्य ब्रह्म विदाम्बरा शैपत्नी आया वृक्षम कुलांगित पशी स्थिता। ब्रह्मा जी बोले, ए मेरे पुत्र अत्रि, सुनो ध्यान से, ए मेरे पुत्र अत्रि, सृष्टि की वृद्धि करो। एक समय था सृष्टि बढ़ाई जाती थी, अब कहते जी महाराज घटाओ, ज्यादा बढ़ रही है, रहने को जगह ही नहीं, रहने को। अब बंबई जी श्रीनगरी में तो बिल्कुल नहीं, एक फ्लैट में कितने कितने बंदे रहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की बड़ी समस्या, बंबई को देख करके लगता है कि समस्या है भाई रहने की, हाँ इतनी लोग, इतनी भारी समस्या। वर्तमान में सृष्टि को रोका जा रहा है, हम दो हमारे दो, दो या तीन बच्चे होते हैं घर में अच्छे, हम दो हमारा एक। ब्रह्मा लगता सुन नहीं पाया, आपको जरूर डांटता हूं, वो जरूर तुमको डांटता है, क्या कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, अत्रि महाराज सृष्टि को वृद्धि करो। अत्रि माने जानते क्या होता है, अत्रि, अत्रि न समास करो, न समास, नत्रि इति अत्रि, नत्रि इति अत्रि, जहां पर तीनों नहीं है, जहां पर तीनों नहीं, कौन नहीं, सत रज तम, जहां सत नहीं है, रज नहीं है, तम नहीं है, वो अत्रि है। नत्रि इति अत्रि, वो स्थिति अनसुईया, अत्रि अनसुईया का प्रसंग है ना, अनसुईया। यहां भी नए समास कीजिए, अनसुईया, नसुईया इति अनसुईया, नसुईया इति अनसुईया, सुईया ईर्षा, सुईया ईर्षा द्वेष, जिसमें ईर्षा नहीं है द्वेष नहीं है, ध्यान देना, जिसमें ईर्षा नहीं है द्वेष नहीं है वही अनसुईया है, और जो त्रिगुणातीत है वही अत्रि है। जब जीव त्रिगुणातीत हो जाता है और सुईया से, कपट से, द्वेष से रहित हो जाता है, तब वो क्या बन जाता है, है? अनसुईया बन जाता है। जब अत्रि और अनसुईया बन जाते हैं, अत्रि अनसुईया बनने पर उसके घर में कौन आता है, फिर कौन आता मालूम, दत्तात्रेय, और कौन आता है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, दुर्वासा जी आते हैं, दत्तात्रेय जी महाराज आते हैं, त्रयदेव पधारते हैं, कितने, ब्रह्मा विष्णु महेश, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, तप किया, पिता ने आज्ञा दी हम ऐसे सृष्टि नहीं करेंगे, पहले तप करेंगे, तप किया ब्रह्मा जी ने, बहुत सुंदर तप किया ब्रह्मा जी ने, ऐसा बढ़िया तप किया, और तप के समय पर ध्यान किया, जो इस सृष्टि का एकम शद विप्रा बहुधा बदंती, हम इस एक परम तत्व का ध्यान करते हैं, आप मेरी कामनाओं की पूर्ति करें, जो पिता ने आदेश दिया
उसका यथावधि पालन हो, ऐसा भाव बना करके अत्रि महाराज ने तप किया। और जब तप कर रहे थे तब पूर्ण हुआ तो भगवान प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट हुए पर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप से प्रकट हुए। अत्रि ने कहा कि भगवान हम कुछ पूछ सकते हैं, आपको नाराज नहीं हो जाना। बोले बोलिए बोलिए, क्या पूछना चाहते हो? महाराज पूछना ये चाहते हैं, मैंने तो एक बुलाया और तुम तीन तीन क्यों चले आई? एक बुलाया तीन आ गए, तीन क्यों आ गए? तीन क्यों आए? तीनों देव बोले, अरे अत्रि जी, हम तीनों मिलकर के एक होते हैं, हम अलग अलग नहीं, हम तीनों एक हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, एका मूर्ति त्रिधा जाता ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका। एक ही तो वो तत्व है, त्रिधा जाता ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों रूपों को धारण कर लेता है। देवी भागवत में देखो तो देवी भागवत में भी आया है, एक ही शक्ति, अरे एक ही शक्ति परमेश्वरस्य और भोगे भवानी कोपे च दुर्गा। एक ही शक्ति के तीन रूप हैं, ऐसी चर्चा। बड़ा आनंद आया, भगवान ने दर्शन दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, शरणम तम प्रपद्येहम एव जगदीश्वरा। हम उस परम तत्व के शरण में हैं, हमें बहुत आनंद आया, भगवान आपने दर्शन दिया। और दर्शन देकर के भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान अंतर ध्यान हो गए थोड़ी देर में, सुनो ध्यान से, थोड़ी देर में क्या देखा? ब्रह्मलोक में रहने वाली, कैलाश लोक में रहने वाली, गोलोक धाम में रहने वाली लक्ष्मी, रुद्राणी, ब्रह्माणी, तीनों में कुछ अहम पैदा हो गया। हम जैसा कोई नहीं, हम जैसा, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, हमारी इस दुनिया में कोई देवी नहीं है। ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात बताई जा रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। तीनों देवियां, नारद जी महाराज चित्रकूट से आए, गोलोक धाम में पहुंचे, लक्ष्मी को नमस्कार किया। बोले महात्मा जी कहां से आए बाबा नारद जी? नारद जी ने कहा, देवी मैं कहां से बतलाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है, अब क्या पूछनी, कहां से आए? अरे ऊंट और महात्मा एक ही से तो होते हैं, ऊंट का मुंह उठ गया उधर चल देता है, इस साधु का जाम उधर चल देता है। लक्ष्मी बोली, आपने बहुत अच्छी की है, ऊंट और साधु की तुलना ऊंट साथ बहुत अच्छी की है। ऊंट भी वृक्ष पर पत्ते नहीं रहने देता है और साधु तुलसी में पत्ते नहीं रहने देते हैं, ठीक समन्वय किया है। फिर बताओ कहां से आए? अरे मां कहां से आया, हम अत्रि क्या गए थे। ओ वाह अनुसुईया, बड़ी पतिव्रता है, बड़ी पतिव्रता है, हमसे बड़ी। बोले आप तो उसके पाषण के बराबर भी नहीं है, मैं क्या कहूंगा आपसे, हमसे हमसे हां। अब इतना कहकर नारद जी वहां से कैलाश, काम ही नारद जी का। विष्णु जी आए, भगवान आप तो बोलते थे कि आप कहने के आए, आप आपके कोई साधु क्षति है ही नहीं, हमको सच बताओ, हम जो कहेंगे वो हां बोलोगे? बोले हां बिल्कुल बोलेंगे। तो बस एक ही काम करिए कि आप जल्दी जल्दी आओ, अत्रि आश्रम पे जाओ और वहां पर जो अनुसुईया है सत्यत्व भंग करो, सबसे बड़ी मैं रहूंगी। नारद जी कैलाश पहुंचे, भोले बाबा थे नहीं, मैया ने एक लड्डू दिया, गप से खा लिया। बोले मैया स्वाद तो बहुत आया पर अनुसुईया जैसा स्वाद नहीं आया, बड़ा स्वादिष्ट था। हाँ कौन सोया, कहां के सोया, अरे मृत्यु लोक में रहती ना, बड़ी साधु है, हमसे बड़ी है। बोले हाँ आपसे भी बड़ी। शंकर जी आए, अच्छी मैया पार्वती ने खबर ली, आप बोलते थे तू सबसे बड़ी क्षति है,
हमसे आगे अनसुईया, हम कुछ नहीं जानते हैं, जल्दी जाओ सतत भंग करो। नारद जी ब्रह्मलोक में गए, वहां भी ऐसी बात हुई तो ब्रह्मा भी आए, ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, ये सारे के सारे वहीं पर चित्रकूट में इकट्ठे हुए। राम राम, जय जय सीताराम, राधे श्याम सब हुई। बोले आप कैसे? बोले देवी ने भेजा। आप कैसे? बोले देवी ने भेजा। आप कैसे? बोले देवी ने भेजा। किस लिए भेजा? बोले ये कहा ऐसा, हमको भी ये कहा, हमको भी यही कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बोल के आए हैं। उन्होंने कहा जब काम हो जाए तभी लौट के आना, ऐसे आना नहीं। बोले ठीक है, अब काम करते हैं। तीनों ने रूप बदला, भिक्षुक बन गए। मैया क्या भिक्षा मांगी? जब भिक्षा मांगी तो मैया ने लीजी भिक्षा, भिक्षाम दी, भिक्षा दी। बोले ऐसे नहीं, विवस्त्र होके लूंगा। मैया ने कहा ये किसी ताकत है, विवस्त्र भिक्षा मांगे हमसे? मैया ने आंख बंद किया, ध्यान किया, ओ ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपको जरूर भिक्षा दूंगी। मैया ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के मंत्र पढ़ा, जो मन अरु कर्म से पति ही हो आधार, तो काला बिस्तर बने नव पुष्पों का हार। जल पड़ करके मारा, काला नांग फूलों का हार बन गया। दोबारा फिर जल दिया, फिर मैया ने बोला, जो मन अरु कर्म से पति ही का हो ध्यान, तो तीनों ईश्वर बने, अरे तो तीनों भिक्षुक बने अति बालक अज्ञान। तुरंत एकदम वो जल लेकर के छीटा मारा तो वो तीनों के तूने नन्हे मुन्ने बच्चे बन गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नन्हे मुन्ने तीनों बालक बन गए। यहां यहां करके रोने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, मैया ने जो शर्त थी व्यवस्था की उसी विधि से उनको पैपान कराया, दुग्ध का पान कराया और पालने में सुला दिया, पालने में सुला दिया। तीनों देवियों ने देखा अभी नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। तीनों खोजती खाजती मंदाकिनी के किनारे पर पहुंची, नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा देवियों कहाँ घूम रही हो? बोले तेरी सब लीला और करामात है, बोल कहाँ कहाँ गए वो मेरे कहाँ गए? बोले कहाँ गए, देखो जाके देखे ना। वो जैसे वो नंद वो मैया, मैया ने अनसुईया ने वो छोटे छोटे से बना दिए हैं, और मैया कह रही थी अब थोड़े दिनों मेरे बेटे तीनों बड़े हो जाएंगे, ऐसी अच्छी बहुएं लाएंगी, जब बहुएं आ जाएंगी उनकी तीनों, अब तीन बहुएं आएंगी तब तुम भस्मी लपेटना और चिमटा बजा के सीताराम सीताराम बोलना, तेरे हाथ जोड़ता हूं बाबा नारद, अब जैसे हो मेरे को मेरे देवताओं से मिला दे। अब क्या मिला दो, कहाँ है बताओ? बोले नीचे चले जाओ, सामने सामने यूं यूं मुड़ जाना, और वहां जाओगे तो वहां अत्री का आश्रम अनुसुईया मैया वहीं रहती हैं। तीनों देवियां पहुंची, दरवाजा उड़का हुआ था कुटिया का, तीनों देवियां गईं, दरवाजा खटखटाया, अरे कौन है? मैया बोली कौन है? तीनों देवियां एक क्षण में बोली, हम आपकी बहुएं हैं, बहुएं है, बहुएं हो तो बहू को पूछने की क्या आवश्यकता है, की लोड़ है, इतने चले आओ, कोई जरूरत पूछने की नहीं, आ जाइए। तीनों गई, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, बहुत लंबी अवधि तक आशीर्वाद लेती रही, सेवा उनकी करती रही। आज तीनों देवियां मैया अनसुईया के पैरों को दबा रही हैं, तीनों की इधर संयोग क्या बनता है। अत्री महाराज आए, अत्री ने देखा देवी उस दिन हम आए थे तो आपने छोटे छोटे बना के रखे थे, और आज मैं आया तब आपने कहा थे आपके बेटे हैं, और आज मैं घुसा तो एक एक हाथ के बेटे हैं और सात सात हाथ ऊंची बहुएं हैं, सात हाथ ऊंची लंबी। अनसुईया मैया बोली, और जिसकी बहुएं बड़ी उसका भाग्य बड़ा, जिसकी बहुएं बड़ी उसका भाग्य बड़ा। आहो आहो भाग्यशाली के घर में ही तो बहुएं बड़ी बड़ी आती हैं। अनसुईया मैया की खूब सेवा हो रही है, तीनों सेवा कर रही थीं। अश्रुपात हुआ, मैया के चरणों पे पड़ा। मैया ने आंख खोली, क्या बात है? बोले बहुत दिन हो गए बिछोपतियों से, अब मेरी प्रार्थना है कि उन्हें मुझे उनसे मिलवाया जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, मुझे उनसे मिलवाया जाए, हम दर्शन करना चाहते हैं। तो मैया ने जल लिया उसी प्रकार से और जल लेकर के तीनों पे छींटा तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप से बन गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आपने संक्षेप से इस लीला को भी सुना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना।
मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मारे खुशी की मैया भूली न समाती है, मारे खुशी के मैया भूली न समाती है, गोदी में लेती कभी पाल न झुलाती है, गोदी में लेती कभी पाल न झुलाती है, पाल न झुलाती है। आज उसके भाग की कौन करे सराहना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे हैं, ऋषियों की कुटिया में रहने को पधारे हैं, ऋषियों की कुटिया में रहने को पधारे हैं, कुटिया में पधारे हैं, कुटिया में पधारे हैं। पूर्ण किनी भगतन की तीनों देव कामना, भूल रहे तीनों लोग बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। भगवान आज सभी चतुराई है, सभी चतुराई है, सभी चतुराई है। पति व्रता देवियों से आज हुआ सामना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा।
कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भगवान की दिव्य लीला का श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज विवेचन करते हैं बाल्ये अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषुणाम बार्धिके मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। बाल्यावस्था में विद्या का अध्ययन करो, यौवने विषयेषुणाम यौवन में संतानोत्पत्ति करो केवल पिंडोदक के लिए, वार्धिके मुनिवृत्ति नाम वृद्धा अवस्था में मुनि की वृत्ति बना लो, योगे अंते तनुत्यजाम। इस विधि से जीवन को व्यतीत करो, बहुत अच्छी बात है। ऐसा विवेचन करते हुए हमारे शास्त्रों का कथन है कि ऐसे जीवन बिताओ। हमारे ग्रंथ पंचतंत्र है, उसमें लिखा गया है कि अजरा अमृतवत प्राग्यो अजरा अमृतवत प्राग्यो विद्या अर्थम च चिंते। अजर अमर अपने को समझते हुए विद्या का अर्थ का अर्जन करो। यदि आप कहेंगे मैंने कल मर जाना है तो कुछ नहीं करोगे। अजर अमर समझते हुए ये काम करो। आगे कहा मृत्युना गृहीत केशेषु अवस्था ढलने लग जाए अथवा जब उत्कट वैराग्य प्रकट हो जाए तो समझो कि मृत्युना गृहीत के शेषु अब मेरी चोटी को मौत ने पकड़ रखा है। कैसे भजन करोगे? तभी भजन होगा, वैसे भजन नहीं होगा। परीक्षित महाराज को इतना बड़ा वैराग्य हुआ, ये क्यों हुआ? उन्हें मालूम पड़ गया कि सातवें दिन मरना है। सातवें दिन? आप तो कहते अभी बरसों जीना है, जल्दी क्या है? क्या जल्दी पड़ी? ऐसी जल्दी क्या पड़ी है? अभी जीना है बरसों, क्या जल्दी पड़ी है? अरे करने के भजन। विष्णु शर्मा ने कहा कि मृत्युना गृहीत केशेषु केशों को मौत ने पकड़ रखा है, ऐसा समझ करके भजन करो। यदि परीक्षित महाराज को न मालूम होता तो इतना उत्कट वैराग्य नहीं होता, निश्चित बात है, निसंदेह बात है। परीक्षित को मालूम हुआ कि सातवें दिन मर जाएंगे, अब दुनिया में किसी से प्रेम नहीं है, किसी पे राग नहीं, कहीं लगाव नहीं, कहीं ममता नहीं, कहीं मोह नहीं। ध्यान देना, कहीं ममता मोह नहीं, उत्कट वैराग्य। जो मन उज्जवल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, चाहे वो ठुकरा के हो, चाहे वो लगन से हो, चाहे कोई धक्का लगे, किसी भी प्रकार से ईश्वर की ओर वृत्ति जुड़नी चाहिए। रामायण में कहा गया है कि बालक रूप राम कर ध्याना। बालकों का जो रूप होता है वो भगवान के सदृश होता है। भगवान बालकों पे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बालकों पर
बहुत जल्दी खुश हुआ। उनका नाम ही बाल भगवान। क्या है? बाल भगवान। बाल भगवान जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन पर क्यों भगवान खुश होता है? बोले कि उनके अंदर काम नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है, लोभ नहीं होता है, मोह नहीं होता है, और कुछ आ जाता है तो घर वाले सिखा देते, उनमें कुछ होता नहीं। बेटे, पिताजी घर में है, जा बोल दे पिताजी सो रहे हैं, अथवा पिताजी घर पे नहीं है। बालक वैसे ही गया, उसने बोल दिया पिताजी ने कहा है पिताजी घर पे नहीं है। कितना भोला है, कितना सरल है। हम उसे खराब करते हैं, हम उसे बिगाड़ते हैं। वो तो बहुत अच्छा है, उसके मन में कोई कपट नहीं है। कपट हम पैदा करते हैं समस्या, और वही बेटा जब हमसे झूठ बोलता है तो हम रोते हैं। हमने सिखाया भाई तो बोल रहा है, ध्यान देना। बड़ी प्यारी बात आ रही है, भगवान भोले से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, भगवान सहज से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, भगवान बालक से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। इसलिए यदि पूजा भजन जप ध्यान यदि कोई बालक करे तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे। भगवान जब ऐसा सुखदेव जी महाराज ने कहा तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान ऐसा कोई बालक है जिसने ऐसे भजन किया और भगवान जल्दी खुश हो गए हो? बोले हाँ है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ध्रुव। उसका नाम है, उसका नाम है ध्रुव नाम का बालक है। उसने कुल 5 महीने में ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया। भगवान थोड़ा बताने की कृपा करें, ये ध्रुव कौन है, ध्रुव कौन है? सुखदेव जी बोले, सुनो परीक्षित, सुनो राजन, जाये उत्तान पादस्य, जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरसस्तयो, सुरचि प्रेषी पत्यो नेतराम इसुतो ध्रुवा। विवेचन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित जाये उत्तान पादस्य सुरचि सुनीति सुरचित तय। दो पत्नी है राजा उत्तानपाद की, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरचि। सुरचि, एक सुरचि है एक सुनीति है। सुरुचि प्रेषी पत्यु, जो सुरुचि है वो पति को बहुत प्रिय है। सुरुचि प्रेषी पत्यु नेत्राय श्रुता ध्रुव, जो इतर अन्य है वो ध्रुव की माता है। विवेचन किया, थोड़ा प्रसंग को हिलाओ झुलाओ, देखो एक कथा भागवत की है कि हमारी है? ऐसा मत सोचना कि भागवत की है। ध्यान देना, चिंतन करो, विचार करो। सुनीति और सुरुचि ये हमारे अंदर बैठी हुई है। ये जो जीभ है, ये जीभ सुनना ध्यान से, ये जो जीभ है, इस जीव की दो पत्नी है, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम सुरुचि। सुनीति अच्छी नीति, अच्छी नीति का मतलब जो बुद्धि भजन करती है, जप करती है, पाठ करती है, शुभ कर्म करती है, सदकर्म करती है, उसका नाम है सुनीति। क्या नाम है? सुनीति। और दूसरी सुरुचि, क्या रुचि? कैसी? स्वा, माने जैसी रुचि हुई, जैसा दिल किया, ये नहीं सोचा, ये नहीं विचारा, अंदर से आवाज आई, अंदर से मन किया, अंदर से दिल किया, गोलगप्पे खाने हैं, चौपाटी पे भेलपुरी बहुत मिलती है, ऐसा मैं सुना है,
मिलती ना, सही सुना। पर ये ध्यान नहीं किया, यह चिंतन नहीं किया उस भेलपूरी पे, उस गुपचुप पे, उस गोल गप्पे पर। सुबह से मक्खियां बैठ रही हैं, ढेर भर उसने गंदगी कर दी उसके ऊपर। वो खाने से मेरा पेट खराब होगा, हम बीमार पड़ेंगे, क्या होंगे। सोचा, ध्यान देना, जो सुरुचि है, जो सुरुचि है वो कहीं पर भी गिर सकती है। सुरुचि कहीं पर गिर सकती है, सुनीति विचार करती है। सुनीति विचार करती है, जब आदमी के अंदर सुरुचि का प्राबल्य होता है और जब सुनीति का प्राबल्य होता है, ध्यान देना, जब सुनीति का प्रबलता होती है तो उसको ध्रुव पैदा होता है। कौन पैदा होता है? ध्रुव पैदा होगा। ध्यान करो, चिंतन करो, विचार करो, प्रयत्न करो कि हम सुरुचि को रखूं, हम सुनीति को रखें, सुरुचि को दबाएं। क्या करें? राजा उत्तानपाद ने उल्टा कर दिया, सुरुचि प्रेषी पत्यु, प्रेषी पत्यु, पति को राजा उत्तानपाद को सुरुचि प्रिय लगती है। क्या लगती है? थोड़ा आप लोग देखो, आप भी देखें ना, आपको कौन अच्छी लगती है? आपकी दो पत्नी है, घर पे नहीं बताना, न माई कल से आने देगी, देवी कल से नहीं आने देगी, तो दो पत्नी बोल रहा है। सुनो ध्यान से, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रयत्न करो, प्रयास करो, जो सुनीति है, कौन है? सुनीति है, उसको ऊपर रखो, सुरुचि को दबा के रखो। यदि सुरुचि दबी रहेगी और सुनीति प्रबल रहेगी तो आपके घर में ध्रुव जी आएंगे, आपके अंदर ध्रुव पैदा होगा, आपको ध्रुव पैदा होगा, और जब ध्रुव पैदा होगा तो तुमको भगवान से मिलाएगा, तुम्हारे कुल को ऊंचा उठाएगा। प्रयत्न करो, प्रयास करो कि हमारे घर ध्रुव उत्पन्न हो। ध्रुव का मतलब क्या होता? अटल, अटल, ध्रुव निश्चय, अटल निश्चय, जिसमें डगमगाना पन्न हो, ऐसी अटल स्थिति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चुनो ध्यान, मैं कुछ कहने जा रहा था, उधर निगाह चली गई, ठीक है, खींचता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। सुरुचि और सुनीति दो पत्नी, सुनो ध्यान, सुरुचि और सुनीति दो हैं। सुरुचि को उत्तम होता है और सुनीति को ध्रुव होता है। एक दिन दोनों बालक खेल रहे थे, उत्तम को गोद में ले रखा था, ध्रुव जब गया तो भय के कारण गोद में नहीं उठाया, गोद में नहीं लिया। बच्चे ने बहुत आग्रह किया, हट किया, जब वो गोद में बैठा तो सुरुचि दौड़ के आई, उठा के उसने झटका मारा, नीचे कर दिया। सुरुचि का प्रयास होता है, सुरुचि का प्रयास होता है। उत्तम का मतलब है उत्त माने उल्टा, ध्रुव से उल्टा, तम, तम माने अंधकार, उत उल्टा, तम माने अंधकार। ध्रुव से जो उल्टा होता है वही तो उत्तम है, ऐसा यहां विग्रह किया गया। ये हम जो बोल रहे हैं, वो जो टीका श्रीधरी है ना, वहां से बोल रहे हैं, बहुत चिंतन है भागवत पर, मेरा बहुत चिंतन है, हमारी 95वीं भागवत है ये, 95। बस बात यही है कि जब खुला टाइम मिलता तो खुली बात करता हूं, और संकोच वाला मिलता तो संकोच की बात करता हूं, और चाहिए भी ऐसा ही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक एक पात्र का आध्यात्मिक अर्थ, व्यवहारिक अर्थ, सामाजिक अर्थ, पारिवारिक अर्थ, जब जैसा तब तैसा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुरुचि ने उतार दिया। जब ध्रुव को ठुकराया जाता है, अच्छी वृत्ति ठुकराई जाती है, अच्छे व्यक्ति को धक्का लगता है तो अंदर तो रोता है, दिल में दर्द होता है, फिर वो मां के पास दौड़ता है, सुनीति के पास, सद्बुद्धि के पास। ऐसा क्यों, ऐसे किस लिए? तो मां ढाढ़स बनाती है। उस मां ने कह दिया है तुझको इस गद्दी पे बैठना, इस गोद में आना है, तो पहले भजन कर, जाप कर, पूजा कर, पाठ कर, और भजन करने के बाद फिर मर, और मर के बाद फिर मेरे उधर से पैदा हो, तब यहां बैठने का प्रयास करना। ध्रुव ने निश्चय किया कि ऐसा कैसे, अभी अभी इसी जन्म में सब कुछ करके दिखाऊंगा। मां के पास गया, मां ऐसी स्थिति है। मां ने समझाया, बेटा बहुत अच्छा बोला उन्हें, गलत नहीं बोला है, गलत नहीं बोला, सच बोला है। पर बेटे बुरा नहीं मानना, मां कितनी सूझबूझ वाली है। मां ने कहा बेटे तुमको जंगल में जाना, भजन करना, परमात्मा को पाना है, ये तुम्हारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। कई बार अभिशाप वरदान बन जाता है, अभिशाप वरदान बन जाता है। मां ने कहा बेटा ये अभिशाप तेरे को वरदान सिद्ध होगा, वरदान होगा। मां ने विचार किया इसके अंदर कहीं विमाता के प्रति कहीं पर कटुता रहेगी तो भजन नहीं कर पाएगा, द्वेष रहेगा तो भजन नहीं कर पाएगा। मां ने समझाया, मेरे प्यारे बेटे मन में ऐसा मत लाना, हमको ऐसा बोला, अरे तेरा किया हुआ कोई कर्म था इसलिए उसने ऐसा बोला है, अब काम बराबर हो गया। तूने कभी अपमान किया होगा, तेरा अपमान हो गया। कितना अच्छा समझाया, बच्चे में द्वेष पैदा नहीं करो, ईर्ष्या पैदा नहीं करो, ऐसा क्या तू ऐसा कर, ये गलत बात है। बेटे तू जंगल में जा, भजन कर। पहले की मां जंगल में भजन के लिए भेजती थी, आज की मां पैसा देती है, सिनेमा में भेजती है। कितना अंतर आ गया, कितना आदमी बदल गया है, कितना व्यक्ति बदल गया है। खुश होके पैसा देता, ले घूम के आ, पिक्चर देख के आ, ये करके आ, वो करके आ। पहले की मां और अब की मां में इतना ही तो अंतर आ गया है। सुनीति ने कहा मेरे बेटे जंगल में जाओ। ध्रुव जी चल दिए, रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी ने उपदेश दिया, समझाया बेटे अब तुम छोकरे हो, छोटे से हो, तुम ये बात कहां से आ गई है। अरे बेटे वापस जाओ, कोई बात नहीं, बोल दिया तो क्या हुआ, ये बच्चों में सब नहीं आना चाहिए। फिर नारद जी ने डरा, हमारे यहां एक स्थाणु खनन न्याय है, आप लोगों ने सुना होगा, स्वाध्यायी लोग हैं। स्थाणु खनन न्याय का मतलब होता है कि पहले खूंटा गाड़ो और हेला के देखो उखड़ता है कि नहीं उखड़ता है, और हेल ला दो चार और ठोक दो ताकि पक्का हो जाए। नारद जी ने स्थाणु खनन न्याय का प्रयोग किया। अरे बेटे क्या हो गया, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। उन्होंने कहा ध्रुव सत्य है, हम लौटने वाले नहीं है, हम पक्के जाएंगे, निश्चय हमारा पक्का है, निश्चय हमारा। अरे कैसे लौटे, जो तेरी सूरत के आशिक हैं, जो तेरी सूरत के आशिक हैं वो समझाए नहीं जाते, जो तेरी ओर बढ़ते हैं वो लौटाए नहीं जाते। हम तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु के सूरत के आशिक हैं, जो तेरी सूरत के आशिक हैं वो समझाए नहीं जाते, जो तेरी ओर बढ़ते हैं वो लौटाए नहीं जाते। हम नहीं लौटेंगे बेटे, जंगल में तुमको कहां खाना मिलेगा, तुमको कहां दूध मिलेगा, कहां तुमको अन्न मिलेगा, कहां अन्न मिलेगा। ध्रुव ने कहा, बड़ी अच्छी बात ध्रुव ने कही, हमारी निष्ठा हमारा विश्वास उस परमात्मा पर है। अरे खुदा अपने दीवानों की, खुदा अपने दीवानों की खुद करता है निगरानी, नया मंजा नया बिस्तर नया दाना नया पानी। भगवान सब देता है। हरिद्वार से चले थे, हमने बिस्तर भेजा था क्या अग्रीश भाई, प्रकाश भाई, राजेश भाई, हमने क्या बिस्तर भेजा था कि चादर भेजी थी
की तखत भेजा, क्या भेजा? खुदा अपने दीवानों की खुद करता है निगरानी। नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी, कोई कमी नहीं। दिन में 10 बार लोग पूछने आते हैं, हमारे ट्रस्टी इतने बढ़िया हैं। हम बहुत जगह जाते पर ट्रस्टी मुझे कहीं मिले ही नहीं। दिल से कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, दिल से। हर चीज की जो हम आवश्यकता समझते, अपने आप से ही सामान पहुंच जाता, हर वस्तु पहुंच रही। ऐसी सेवा, बड़ी विलक्षण सेवा। खुदा अपने दीवानों की खुद करता है। अरे जब आनंद चेतन उस ईश्वर के नाम पे निकला है तो व्यवस्था उसी ने करनी है। ध्रुव ने कहा मैं जिसके नाम पे निकला व्यवस्था वो करेगा, मुझे किस बात की चिंता है। खुदा अपने दीवानों की खुद करता है निगरानी। नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी, कोई चिंता नहीं है। ध्रुव जी गए, बेटे जा रहे हो, इधर आओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बेटे इस मंत्र का जाप करना, जाओ तुम्हारी साधन सफल होगी। संत का आशीर्वाद मिल गया, गुरुजी ने मंत्र दे दिया। आद गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो मे शरणम किमस्ति। अरे गुरु कृपालो कृपया बदईत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरुदेव नौका दे देते हैं, दीर्घ नौका। उस नौका को पाकर के घबराने की क्या आवश्यकता है, क्या डर है, क्या भय है, आराम से जाइए। सदगुरु रूपी नौका मिल गई है, बैठ जाओ आराम से, पार हो जाओगे। ध्रुव जी जंगल में जाते हैं, यमुना के किनारे पर यथाविधि आसन को जमाया है। आह क्या आनंद, मैं भाव में जाने वाला हूं। हां जी 8 बज जाएगा, ऐसा नहीं करूंगा, सुबह की तरह नहीं करूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, हमारा प्रकाश भाई आ चढ़ाई सुबह बैठा था। बोले महाराज, प्रकाश भाई बोले महाराज मैं सच कहता हूं, मैं भूल गया कि मैं कथा सुन रहा हूं, मुझे तो लग रहा था कि सब हो रहा है सामने। प्रकाश भाई बोला हमसे, भाव वो चीज होती है, भाव वह चीज होती है। भाव में तो भगवान साक्षात प्रकट होते हैं और स्वयं अपनी लीला को दिखाते हैं। ये लीला कहीं नहीं जा रही है, लीला दिखाई पड़ रही है, ऐसा भाव, ऐसा भाव। अब घड़ी जवाब दे रही है, सुनो ध्यान से। आसन को लगाया है, प्राण को अपान में, व्यान को उदान में समाहित करते हुए अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख करके पद्म आसन पर बैठकर वृत्ति को समाहित किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया। तमाम प्रकार की, जब कोई उस ईश्वर की ओर बढ़ता है तमाम बाधाएं भी आती हैं, अनेक बाधाएं आ रही हैं, लेकिन वो सब बाधाएं भगवान की कृपा से हटती जा रही हैं। संक्षेप में बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भाव में नहीं जाना है। जय जय श्री राधे श्याम। 3-3 दिन के अंतराल में सुन सुनना था, भाव में नहीं जाऊंगा भैया प्रकाश। 3-3 दिन के अंतराल में कैद के फल लेते हैं 1 महीने तक, फिर 6-6 दिन के अंतराल में दूसरे महीने में, 6-6 दिन के अंतराल में दूसरे महीने में केवल जल पी करके रहते हैं, तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में, 9-9 दिन के अंतराल में केवल वायु का पान करके रहते हैं। सुनना ध्यान से, जब 4th और 5th महीना आया तो ध्रुव जी ने ये सब कुछ छोड़ दिया, केवल वायु के ऊपर रहे। और 5वें महीने में वायु लेना भी बंद कर दिया, प्राणों का स्तंभन कर लिया, रोक लिया। जब प्राण अवरुद्ध हुआ, ध्यान देना, जब प्राण अवरुद्ध हुआ, प्राण के भक्त के प्राण के अवरुद्ध होने से भक्त जब कुंभ करता है, प्राणों को रोकता है, जब भक्त प्राणों को रोकता है, प्राणायाम की प्रक्रिया बड़ी सुंदर है, कुंभक पूरक रेचक उदन न जाते हुए लौट के आइए। केवल कुंभक किया,
प्राणों को अवरुद्ध किया, प्राणों को रोका, और जब प्राणों को रोका, जब भक्त भगवान के भजन में बैठता है तो विश्वरूप हो जाता है, विश्वरूप हो जाता है। जब ध्रुव जी ने ऐसा तप किया, प्राणों को रोका, यहां भागवत में लिखा है सब जीवों के प्राण अवरुद्ध हो गए, सबके प्राण रुक गए, हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु के पास ब्रह्मदेव गए, अनेक देव गए, बोले महाराज सभी के प्राण अवरुद्ध हो गए हैं, दुनिया का प्रलय होने वाला है, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए? भगवान विष्णु बोले वो मेरा भक्त है ध्रुव, उसने अपने प्राणों को अवरुद्ध किया है, इसलिए सभी सृष्टि का प्राण अवरुद्ध हो गया है। भगवान विष्णु गए, आवाज दी, आवाज दी, कौन सुने आवाज, वो तो अंदर भगवान की छवि बैठी हुई है, उसको निहार रहे हैं, उसमें तन्मय हैं, उसी विभोर हैं, क्या आनंद क्या मस्ती ध्रुव जी महाराज को आ रही है। भगवान समक्ष खड़े हैं, आवाज दे रहे हैं, पर आंख नहीं खोल रहे हैं। भगवान ने कहा ये कैसे कैसे जगेगा, भगवान ने अपने स्वरूप को खींचा, जबरदस्ती खींचा, भगत ने वो स्वरूप पकड़ करके रखा है, भगवान ने प्रयास किया, अपने स्वरूप को खींचा, और जब खींचा तो जिस प्रकार से मछली बिना जल के छटपटाती है, ध्रुव जी ने आंख खोली तो सामने चतुर्भुज दर्शन भगवान का, नारायण का सामने खड़ा, बोले विष्णु भगवान की, भगवान का दर्शन किया, विष्णु भगवान का स्तुति गाई है, ससंख चक्रम शकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषे रुहे क्षणम आदि आदि स्तुति गाई है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। शंख लिया, कपोल से लगाया, और कपोल से लगाते ही वाणी मुखरित हो गई, वरम रूही वरम रूही, वर मांगो क्या चाहिए। ध्यान देना, कई बार व्यक्ति चूक हो जाती है। ध्रुव जी ने जो वर मांगा भगवान ने वर दे दिया, और जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो उन्हें लगा कि हमसे चूक हो गई है, हमने ये दुनिया के पदार्थ क्यों मांगे, ये राज्य क्यों मांगा, ये गद्दी क्यों मांगी, ये दुनिया की वस्तुएं क्यों मांगी, अरे मेरे को तो साक्षात मोक्ष मांगना चाहिए था, हमको मोक्ष मांगना चाहिए था, हमसे भूल हो गई, हमसे त्रुटि हो गई, हमसे गलती हो गई। ध्रुव जी ने सोचा कि हमसे भूल हुई, चूक हुई। जो वो परम तत्व है, यदगत्वान निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जहां जाने के बाद आदमी दोबारा फिर नहीं आता है। पर ये तो भक्त हैं, साधना के बल पर उस पद की प्राप्ति की है, उत्तम युद्ध करने जाते हैं, यक्षों से मारे जाते हैं, ध्रुव जी ने पुनः युद्ध किया है, पिता मनु पहुंचे हैं, उन्होंने दादा मनु पहुंचे हैं, युद्ध को रुकवाया है, ध्रुव को वैराग्य हुआ है, पुनः फिर तप किया है, तप करने के बाद में विमान आता है, विमान आया, मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु के पद पर सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज उस विमान पर चढ़ते हैं। माता कहां है, वो विमाता कहां है, माता विमाता पिता को लेकर के आगे रथ उनका चलना चाहिए, विमान उनका आगे चलना चाहिए। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज सभी लोग को लेकर के उस ध्रुव लोक को पहुंचे हैं, उस ध्रुव लोक में गए हैं। भक्ति की बहुत बड़ी शक्ति है, जीवन में इस प्रकार को भक्ति को लाना चाहिए। भक्ति ही सर्वस्व है, भक्ति से बढ़कर के जगत में कुछ नहीं है। अपनी वृत्तियों को ईश्वर में लगाओ, भगवान में जोड़ो। ध्रुव जी महाराज ने इस प्रकार से अपनी वृत्ति को लगाया है, जीवन को सफल किया है। बड़ी सुंदर चर्चा है, इस प्रकार से जीवन को बनाने का प्रयास करो। हमारे प्रेम आश्रम के द्वारा आयोजन कराया जा रहा है, इसका लक्ष्य यही है कि आप भी ध्रुव की तरह, ध्रुव की भांति बनकर के भगवान का चिंतन करो और भगवान की प्राप्ति करो, यही जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा, शेष चर्चा कल की सभा में की जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय
वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय
वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय
वासुदेवाय मेरो नंदन नंदनाय
वासुदेवाय मेरो नंदन नंदनाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय
वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय
वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय
नंदनंदनाय मेरो वासुदेवाय
नंदनंदनाय मेरो वासुदेवाय वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराणी की धर्म भक्ति विज्ञान खान की
धर्म भक्ति विज्ञान धानी की
महापुराण भागवत निर्मल
महापुराण भागवत निर्मल
सुखी मुख विगलित निगम कल्पिफल
निगम कल्पि फल
परिमानंद सुधारस में कली
परिमानंद सुधारस में कली
लीला रति रस रस निधान की
आरती अति पावन पुराणी की
कलिमल मथन प्रताप निवारिणी
कलिमल मथन प्रताप निवारिणी
जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी
जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी
सेवति सतत सकल सुखी
सेवत सतत सकल सुख कारिण
सिंहौषधि हरि तरति कान की
आरती अति पावन पुराणी की
विषय विलास विमोह विनाशिनी
विषय विलास विमोह विलासिनी भगवत तत्व रहे प्रकाशिनी
परम
ज्योति परमात्म ज्ञानी की
परम हंस मुनि मनि उल्लासिनी
परम हंस मुनि मनि उल्लासिनी
रसिक हृदय रस रास विलासिनी
रसिक हृदय रस रास विलासिनी
मुक्ति भुक्ति रति प्रेम सुदासिनी
मुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासिनी
कथायक कीर्तन प्रिय सुजानकी
आरती अति पावन पुराण की
धर्म भक्ति विज्ञान खान की
धर्म भक्ति विज्ञान धान